conference center at Temple Square in Salt Lake
शहर में टेंपल स्क्वायर सम्मेलन केंद्र से ये अंतिम दिनों के संतों का यीशु मसीह के गिरजाघर का 184th वार्षिक जनरल सम्मेलन है। वार्ताकारों को जनरल अधिकारियों और गिरजा के जनरल कार्यालयों के साथ और इस अधिवेशन के लिए संगीत मॉर्मन गायक मंडली द्वारा चुना गया है। बॉनविल डिस्ट्रीब्यूशन द्वारा इस प्रसारण का प्रबंध जन सेवा के लिए किया गया है। कोई भी पुनरुत्पादन करना, रिकॉर्डिंग, प्रतिलिपि बनाना या इस कार्यक्रम का दूसरा प्रयोग करना बिना किसी लिखित सहमति के वर्जित है। अध्यक्ष डीटर एफ उपडोर्फ गिरजाघर के प्रथम अध्यक्षता में प्रथम सलाहकार इस अधिवेशन का संचालन करेंगे।
Dear brothers and sisters, we welcome you.
भाइयों और बहनों, अंतिम दिनों के संतों के यीशु मसीह के गिरजे के 184वें अर्धवार्षिक महासम्मेलन में चौथे सत्र में आपका स्वागत करते हैं। अध्यक्ष थॉमस मॉन्सन, जो इस सम्मेलन के संचालन करता है, ने मुझे इस अधिवेशन का संचालन करने को कहा है। हम विश्व भर में गिरजे के सदस्यों और मित्रों को शुभकामनाएं देते हैं और स्वागत करते हैं जो इन कार्यवाहियों में रेडियो, टेलीविजन, इंटरनेट या उपग्रह प्रसारण द्वारा भाग ले रहे हैं। इस सत्र का संगीत मंडप गायक मंडली द्वारा मैक विलबर्ग और रायन मर्फी के निर्देशन में होगा और लिंडा मार्गेट्स और बोनी गुडलिफ ऑर्गन बजाएंगे। गायक मंडली इस सत्र को आरंभ करेगी गाकर स्वीट इज द वर्क। फिर बिशप डीन एम डेविस द्वितीय सलाहकार अध्यक्षिक धर्माध्यक्ष में आरंभिक प्रार्थना करेंगे।
Oh, Our beloved Father in heaven, our hearts.
हमारे स्वर्ग के पिता, हमारे हृदय और आत्माएं इस बार के सम्मेलन के उससे छू गई हैं। आपका भारी धन्यवाद करते हैं और जो अनुभूतियां और जो संदेश हम लोगों को बांटा गया है, हम आज की शाम आपकी आत्मा को आमंत्रित करते हैं ताकि जो भी स्पीकर लोग, जो भी लोग संसार भर में इसको सुनते हैं, कि हम अपने आपकी सेवा प्रार्थना भर के करें। ये सब कुछ मांगते हैं यीशु मसीह के नाम से, आमीन।
गायक मंडली गाएगी I stand all amazed. संगीत के बाद हम अध्यक्ष बर्ट के पैकर 12 प्रेरितों के परिषद के अध्यक्ष को कृपा कर सुनेंगे। उनके बाद एल्डर विलियम आर वॉकर 70 के बोलेंगे। एल्डर एल टॉम पेरी 12 प्रेरित के परिषद से हमें संबोधित करेंगे।
Confused. times of war or uncertainty have a way of sharpening our.
मैं आपके साथ उन सच्चाइयों को बांटना चाहता हूँ जिनको जानना महत्वपूर्ण है. युद्ध अनिश्चितता के समय एक प्रकार से हमारे ध्यान को उन बातों के प्रति सुधारने का तरीका है जो वास्तव में महत्वपूर्ण है. द्वितीय विश्व युद्ध मेरे लिए महान आत्मिक हलचल का समय था. मैंने गवाही के छोटे टुकड़ों के साथ ब्रिगम सिटी यूटा में अपना घर छोड़ा और कुछ अधिक पाने की आवश्यकता को महसूस किया था. जब मैं उत्तरी ओकिनावा जापान में लेशिमा द्वीप पर तैनात था, मैंने संदेह और अनिश्चितता से संघर्ष किया था. मैं समाचार के व्यक्तिगत गवाही चाहता था. मैं जानना चाहता था एक रात जब नींद नहीं आ रही, मैं अपने तंबू से बाहर आया और एक बंकर में घुस गया जो 190 लीटर के ईंधन के ड्रमों को रेत से भर कर एक के ऊपर रख कर बनाया गया था. इसकी कोई छत नहीं थी और इसलिए मैं रेंगकर भीतर घुसकर सितारों से भरे आसमान को निहारने लगा और घुटने के बल झुक प्रार्थना की. प्रार्थना के बीच ये सब हुआ. जो भी हुआ मैं उसकी व्याख्या नहीं कर सकता. यदि मैं ऐसा करने के लिए दृढ़ था, इसका वर्णन करना मेरी क्षमता से अधिक है, लेकिन यह आज भी उतना ही स्पष्ट है जितना यह 65 साल उस रात को था. मैं जानता हूं यह बहुत व्यक्तिगत है, बहुत ही निजी प्रकटीकरण. आखिरकार मैंने इस समय जाना था. मैं निश्चित रूप से जानना चाहता था क्योंकि इसे मुझे दिया गया था. कुछ देर बाद मैं उस बंकर से रेंगकर बाहर आया था, अपने बिस्तर वापस लेट गया. अनुभूति इतनी खुशनुमा थी कि ऐसा लगा मानो पैर जमीन को छू नहीं रहे थे. बाकी सारी रात मैंने आनंद और चकित होते ही गुजारी. बजाय सोचने कि मैं कोई विशेष था, मैंने सोचा कि यदि इस प्रकार चीज मेरे पास आ सकती है तो यह किसी के पास भी आ सकती है. मैं फिर भी इस पर विश्वास करता हूँ. इसके बाद के सालों में मेरी समझ में आया कि इस तरह का अनुभव तुरंत अनुसरण करने के लिए एक प्रकाश और उड़ाने के लिए एक बोझ है. मैं आपके साथ उन सच्चाई को बांटना चाहता हूँ जिनको जानना महत्वपूर्ण है. ऐसी बातें जो मैंने लगभग 90 साल के जीवन में और 50 साल जनरल अथॉरिटी के रूप में सीखा और अनुभव किया है. बहुत सी बातें जो मुझे पता चली हैं उस श्रेणी में आती हैं जिन्हें सिखाया नहीं जा सकता, लेकिन इन्हें सीखा जा सकता है. बहुत सी अन्य महत्वपूर्ण बातों की तरह अनंत महत्व की बातों का ज्ञान केवल व्यक्तिगत प्रार्थना और चिंतन के द्वारा आता है. ये उपवास और धर्मशास्त्र के साथ मिलकर पवित्र आत्मा के प्रभावों और प्रकटीकरणों और प्रेरणाओं को निमंत्रण देंगे. यह हमारे लिए सुरक्षा से निर्देश उपलब्ध कराता है जब हम थोड़ा थोड़ा करके सीखते हैं. प्रकटीकरण वादा करते हैं कि जो कुछ ज्ञान हम इस जीवन में प्राप्त करते हैं पुनरुत्थान में हमारे साथ भी जी उठेगा, और यह समझ और ज्ञान परिश्रम और आज्ञाकारिता से प्राप्त किया जा सकता है. एक अनंत सच्चाई जो मैं जानता हूं कि परमेश्वर जीवित है, वह हमारा पिता है, हम उसके बच्चे हैं. हम अनंत पिता परमेश्वर और उसके पुत्र यीशु मसीह और पवित्र आत्मा में विश्वास करते हैं. अन्य सभी उपाधियों में से जिन्हें वह उपयोग कर सकता है उसने पिता कहलाना चुना. उद्धारकर्ता ने आज्ञा दी थी, सो तुम इस रीति से प्रार्थना किया करो, हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है. उसके द्वारा पिता के नाम का उपयोग हम सब के लिए एक सबक है, जबकि हम उसे समझते हैं जो इस जीवन में अधिक महत्वपूर्ण है. माता पिता होना एक पावन सौभाग्य है, और हमारी विश्वसनीयता पर निर्भर करते हुए ये एक अनंत आशीष बन सकता है. गिरजे में सभी गतिविधियों का मुख्य लक्ष्य है कि पुरुष और उसकी पत्नी और उसके बच्चे घर में सुख से रहें. वे जो विवाह नहीं करते हैं या जिनके बच्चे नहीं हो पाते हैं, उस अनंत आशीषों से वंचित नहीं किए हैं जो वे पाना चाहते हैं, लेकिन वर्तमान में ये उनकी पहुंच से परे हैं। हमें नहीं पता कैसे या कब आशीषें स्वयं को प्रकट करेंगी, लेकिन अनंत प्रगति की वादा किसी भी विश्वासी व्यक्ति को उपलब्ध है जो पावन अनुबंधों को बनाता और पालन करता है। आपकी गुप्त इच्छा और आंसू भरी याचना पिता और पुत्र दोनों के हृदय को स्पर्श करेंगी। आपको उनसे एक व्यक्तिगत आश्वासन दिया जाएगा कि आपका जीवन परिपूर्ण होगा और कि कोई भी आशीष जो आवश्यक है आप उसे नहीं खोएंगे। प्रभु के सेवक के रूप में उस पद पर कार्य करते हुए जिसमें मुझे नियुक्त किया गया है, आरी परिस्थिति के लोगों से मैं वादा देता हूं कि आपके उद्धार और उत्कर्ष के लिए सभी महत्वपूर्ण आशीषें आपको निर्धारित समय पर मिलेंगी। सुनी बाहें भरी जाएंगी और बिखरे सपनों और याचनाओं से आहत हृदयों के घाव भरे जाएंगे। अन्य सच्चाई जो मुझे पता चली है कि पवित्र आत्मा वास्तव में है, वह परमेश्वर तत्व का तीसरा सदस्य है। उसका उद्देश्य सच्चाई और धार्मिकता की गवाही देना है। वह कई प्रकार से समय को प्रकट करती है जिसमें शांति और आश्वासन की अनुभूतियां शामिल हैं। यह दिलासा, मार्गदर्शन और जरूरत पड़ने पर सुधार भी कर सकती है। पवित्र आत्मा की सहभागिता धार्मिक जीवन जीकर हमारे संपूर्ण जीवन में प्राप्त की जा सकती है। पवित्र आत्मा का उपहार सुसमाचार की एक विधि द्वारा प्रदान किया जाता है। जिसके पास अधिकार होता है वह गिरजे के नए सदस्य के सिर पर हाथों को रखता है और इस प्रकार के शब्द कहता है, पवित्र आत्मा को ग्रहण करें। यह विधि अपने आप हमारे भीतर कोई नजर आने वाला परिवर्तन नहीं करती है, लेकिन यदि हम प्रेरणाओं को सुनते और अनुसरण करते हैं हम पवित्र आत्मा की आशीष प्राप्त करेंगे। हमारे स्वर्गीय पिता का प्रत्येक बेटा या बेटी मरुनाय के वादे की सच्चाई को जान सकता है। पवित्र आत्मा की शक्ति के द्वारा तुम सब बातों की सच्चाई को जानोगे। एक दिव्य सच्चाई जो मैंने अपने जीवन में प्राप्त की है वह प्रभु यीशु मसीह की मेरी गवाही है। सबसे पहले और जो हम प्रमाणित करते हैं प्रकटीकरणों पर आधारित, वह प्रभु का नाम है। यही वह अधिकार है जिसके द्वारा हम गिरजे के कार्य करते हैं। प्रत्येक प्रार्थना जो की जाती है बेशक छोटे बच्चों द्वारा यीशु मसीह के नाम में समाप्त होती है। प्रत्येक आशीष, प्रत्येक विधि, प्रत्येक अभिषेक, प्रत्येक आधिकारिक कार्य यीशु मसीह के नाम में किए जाते हैं। ये उसका गिरजा है और इसका नाम उसके नाम पर रखा गया है, अंतिम दिनों के संतों का यीशु मसीह का गिरजा। मार्मन की पुस्तक में एक महान घटना है जहां निफायो पिता से प्रभु के नाम में प्रार्थना कर रहे थे। प्रभु प्रकट हुआ और पूछा, तुम क्या चाहते हो कि मैं तुम्हें दूं? और उन्होंने उनसे कहा, प्रभु हम चाहते हैं कि तुम हमें इस गिरजे का नाम बताओ जिससे हम इसे पुकारेंगे, क्योंकि इस मामले में लोगों में मतभेद है। और प्रभु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि ऐसा क्यों है कि इस बात के कारण लोग बड़बड़ा रहे हैं और मतभेद कर रहे हैं? क्या वे धर्मशास्त्रों को नहीं पढ़ते जो बताता है कि तुम्हें मसीह का नाम ग्रहण करना चाहिए जो कि मेरा नाम है? क्योंकि अंतिम दिन में तुम्हें इसी नाम द्वारा बुलाया जाएगा। और जो भी मेरा नाम ग्रहण करता है और अंत तक शयनशील बना रहता है वही अंतिम दिनों में बचा जाएगा। इसलिए जो भी तुम करोगे मेरे नाम से करोगे, इसलिए गिरजे का नाम तो मेरे नाम पर रखोगे और मेरे नाम में पिता को पुकारोगे जिससे कि वह मेरे कारण गिरजे को आशीषित करेगा। ये उसका नाम यीशु मसीह है, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्य में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार पा सके। गिरजे में हम जानते हैं वह कौन है। यीशु मसीह परमेश्वर का बेटा है। वही पिता का इकलौता पुत्र है, वह वही है जो मारा गया था और वह फिर से जी उठा था। पिता के पास वह हमारा वकील है। याद रखो कि यह मुक्तिदाता की चट्टान पर है जो कि परमेश्वर का पुत्र मसीह है, जिस पर तुम अपनी नींव रखो। वह जो हमें थामे रहता है और हमें और हमारे परिवारों को जीवन के तूफानों में सुरक्षा देता है। संसार भर में जहां प्रत्येक रविवार को किसी भी राष्ट्रीयता या भाषा में सभाएं होती हैं, प्रभु भोज को एक समान शब्दों में आशीषित किया जाता है। हम अपने ऊपर मसीह के नाम को धारण करते हैं और सदैव उसको याद रखते हैं। यह हमारे ऊपर लिखी हुई है। भविष्यवक्ता नीफई ने घोषणा की थी, हम मसीह के विषय में बात करते हैं, हम मसीह में आनंदित होते हैं, हम मसीह का प्रचार करते हैं, हम मसीह की भविष्यवाणी करते हैं और हम अपनी भविष्यवाणियों के अनुसार लिखते हैं कि हमारी संतान जान सके कि वे अपने पापों की क्षमा के लिए किसके पास जाए। हम में से प्रत्येक प्रभु यीशु मसीह की अपनी स्वयं की गवाही प्राप्त करनी चाहिए। फिर हम उस गवाही को अपने परिवार और दूसरों के साथ बांट सकते हैं। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि शैतान है जो व्यक्तिगत रूप से प्रभु के कार्यों में वादा डालना चाहता है। हमें चुनना चाहिए कि हमें किसका पालन करना है। हमारी सुरक्षा उतनी सरल है जितना व्यक्तिगत रूप से अनुसरण करने के लिए उद्धारकर्ता को चुनना, यह निश्चित करना कि हम विश्वासी हों, उसकी तरफ कायम रहे। नए नियम में यूहन्ना लिखता है कि कुछ थे जो उद्धारकर्ता और उसके शिष्यों के प्रति दृढ़ नहीं थे और उसके बहुत से शिष्य वापस लौट गए और उसके साथ ना चले। तब यीशु ने उन बारों से कहा, क्या तुम भी चले जाना चाहते हो? शमौन पतरस ने उसको उत्तर दिया कि हे प्रभु, हम किसके पास जाएं? अनंत जीवन की बातें तो तेरे पास हैं और हमने विश्वास किया और जान गए हैं कि परमेश्वर की पवित्र जन तो ही है। पतरस ने जो पाया था उसे उद्धारकर्ता का प्रत्येक अनुयायी प्राप्त कर सकता है। विश्वासी होकर यीशु मसीह के प्रति निष्ठावान होने के लिए हम उसे हमारा मुक्तिदाता के रूप में स्वीकार करते हैं और उसकी शिक्षाओं के अनुसार जीने के लिए अपनी क्षमता के अनुसार सब कुछ करते हैं। इतने सालों के बाद जो कुछ मैंने जिया और सिखाया और सेवा की है, संसार भर में लाखों किलोमीटर की यात्रा करने के बाद जो कुछ भी मैंने अनुभव किया है, एक महान सच्चाई है जिसे मैं बांटना चाहता हूँ। यह यीशु मसीह की मेरी गवाही है। पावन अनुभव के बाद जोसेफ स्मिथ और सिडनी रिग्डन के यह लेखा था और अब उसके विषय में कई गवाही दी जाने के बाद यह अंतिम गवाही है जो हम उसके विषय में देते हैं कि वह जीवित है क्योंकि हमने उसे देखा है। उनके शब्द मेरे शब्द हैं। मैं विश्वास करता हूं और मैं आश्वस्त हूं कि यीशु ही मसीह है, जीवित पिता का पुत्र। वह जीवित है, वह पिता का इकलौता पुत्र है और उसके द्वारा और उसमें होकर और उससे संसारों की रचना की जाती है और की गई है और इनमें रहने वाले लोग परमेश्वर के पुत्र और पुत्रियां हैं। मैं अपनी गवाही देता हूं कि उद्धारकर्ता जीवित है। मैं प्रभु को जानता हूं, मैं उसका गवाह हूं, मैं उसके महान बलिदान और स्वर्गीय पिता के बच्चों के प्रति उसके प्रेम को जानता हूं। मैं विनम्रता लेकिन पूर्ण दृढ़ता से अपनी विशेष गवाही देता हूं यीशु मसीह के नाम में। आमीन।
I love church history.
Perhaps like many of you, my own
मुझे गिरजे के इतिहास से प्रेम है. शायद आप में से कोई मेरे अपने मौजूद विश्वास के हैं. जब मैंने हमारे पूर्वजों के असाधारण समर्पण के बारे में सीखा था, जिन्हें सुसमाचार का ग्रहण किया और अपने बच्चे विश्वास को जियो. एक महीने 12,000 अद्भुत युवा गिल्बर्ट एरिज़ोन मंदिर के जिले में अपने नए मंदिर के पूरे होने का प्रेरणा भरी अदाकारी अपने योग्य जीवन को जीने वचनबद्धता को जश्न बनाया था. उनके जश्न का शीर्षक था सच्चे विश्वास को जियो. जैसे उस एरिज़ोना के विश्वासी युवाओं ने किया था, हर एक अंतिम दिनों के संतों का सच्चे विश्वास को जियो से समर्पण चाहिए. सुसंगीत के शब्दों में कहा, ट्रू टू द फेथ दैट योर पेरेंट्स हैव चेरिश. हम जुड़ सकते हैं सच्चे विश्वास से जियो, जिसे हमारे पूर्वज हृदयों से बनाया है. मैं चकित हूँ कि उनमें से प्रत्येक एरिज़ोना के उत्साहित युवाओं ने अपने गिरजे के इतिहास को जाना होता, यदि वे जानते कि उनके परिवार के गिरजे के सदस्य कैसे बने थे. अंतिम दिनों के संत यदि ये कि उनके पूर्वजों को परिवर्तित कहानियों को जान पाते तो कितना अच्छा होता. मानो या मानो, आप पारदर्शी वंश के हैं. मॉर्मन पारदर्शी विश्वास की संपत्ति उसके अपने बलिदान की संपत्ति है. ये अंतिम दिनों के संतों का यीशु मसीह का गिरजा घर की महान संपत्ति है. गिरजा घर इतिहास में अति महान आश्चर्यचकित अध्याय है. जब विद्रोह प्रभु के एक प्रेरित 1840 के सारे ब्रिटेन यीशु में यीशु मसीह का सुसमाचार को पूर्ण स्थापना की शिक्षा दी गई थी, जिस सिर्फ गिरजा की स्थापना के 10 वर्ष बाद. विल्फोर्ड वुड्रफ और अन्य प्रेरितों के काम का ध्यान इंग्लैंड के लिवरपूल और पेंसिलवेनिया क्षेत्रों पर था. सफलता की उम्मीद के साथ एल्डर वुड्रफ, जो बाद में गिरजे के अध्यक्ष बने थे, ने इस महत्वपूर्ण काम के लिए लगातार परमेश्वर से मार्गदर्शन के लिए प्रार्थना की थी. उनकी प्रार्थना ने उन्हें भिन्न जगह में जाकर सुसमाचार सिखाने के लिए प्रेरणा दी थी. अध्यक्ष मॉन्सन ने हमें सिखाया था कि जब प्रेरणा सड़क से कुछ करने के लिए आती है, हमें उन्हें तभी करना है, हमें विलंब नहीं करना है. ठीक वैसे ही विक्टर वुड्रफ ने किया था. आत्मा से साफ निर्देशन के साथ दक्षिण में जाओ. एल्डर वुड्रफ तुरंत ही निकल गए और इंग्लैंड के एक भाग जो कहलाता है हेयर फॉर शीन की ओर यात्रा की. दक्षिण इंग्लैंड को किसानों का गाँव. वे उनसे एक ख्याति किसान जॉन बेनवाओ नामक से मिले थे. वहां उनका अभिनंदन हार्दिक हृदय और धन्यवाद करते हुआ था. एक 600 लोगों का समूह जो अपने आप को यूनाइटेड मेंटर कहता है, सच्चाई की ज्योति के लिए प्रार्थना कर रहे थे. प्रेसिडेंट वुड्रफ ने उनकी जवाब को विल्फोर्ड वुड्रफ के रूप में दिया था. एल्डर वुड्रफ के फल का उपाय करने की शिक्षा दी और बहुत ने बपतिस्मा लिया. ब्रिंगम यंग और विनेट रिचर्ड ने हेयर फॉर शीन में जुड़े और तीनों प्रेरितों को अद्भुत सफलता मिली थी. सिर्फ कुछ ही महीनों में उन्होंने 33 शाखाएं 541 सदस्यों के लिए बनाई जो गिरजे से जुड़े थे. ये अद्भुत कार्य जारी रहा और आखिरकार यूनाइटेड बेथरीन का लगभग सभी सदस्यों ने अंतिम दिनों के संतों का यीशु मसीह का गिरजाघर में बपतिस्मा लिया था. मेरे एक परदादी हैना हैरिस उनसे से पहली थी मिली जिन्होंने विल्फोर्ड वुड्रफ को सुना. उन्होंने अपने पति रॉबर्ट हैरिस जूनियर को बताया था कि उसने परमेश्वर के वचन सुने कि वे बपतिस्मा लेना चाहते. रॉबर्ट को अपनी पत्नी की बात अच्छी नहीं लगी. उन्होंने कहा कि वे मॉर्मन प्रचारक दिए गए अगले के संदेश को उनके साथ होंगे और उन्हें सीधे बाहर निकाल देंगे. सभा में आगे बैठे गए रिश्ते के साथ ही वे झुका और एल्डर और शायद मेहमान प्रचारक के सवाल करेंगे. रॉबर्ट को तुरंत आत्मा ने छू लिया. जैसे ही उनकी पत्नी को छुआ और वे जानते हैं कि बंधनों का तेज सत्य था और उनकी पत्नी ने बपतिस्मा लिया. हजारों के समान ये कहानी विश्वास और श्रद्धा की है. जब ये सुसमाचार का संदेश सुनते हैं, वे जानते हैं कि ये सत्य है. जब स्क्रिप्चर कहता है मेरी भेड़े मेरी शब्द सुनती हैं, मैं उन्हें सुनना मैं जानता हूँ, मेरे पीछे पीछे चलती हैं. चरवाहों की आवाज सुनकर उन्होंने अपने जीवनों को सुसमाचार की जीने के लिए वचनबद्धता और पवित्र भविष्यवक्ता के निर्देशन के अनुसार अपनाने सियोन और एकत्रित करके और बुलाहट के जवाब में उन्होंने इंग्लैंड में अपने घर पीछे छोड़ दिए. महासागर पार की और नावयुक्त गए. उन्होंने सुसमाचार को अपने पूरे मन से गले लगाया था ताकि वे अपनी नई भूमि पर बसाने की कोशिश करने लगे. उन्होंने अपनी मेहनत के दशमांश के द्वारा नावो मंदिर को बनाने में सहायता की थी हर दसवें दिन वे मंदिर को बनाने के लिए काम में व्यतीत करते थे। उनके प्यारे जोसेफ ने और उनके भाई हारम की मृत्यु की खबर सुनकर उनका दिल टूट गए थे, परंतु वे बढ़ते गए। ये विश्वास की सच्चाई से रुके रहे थे। जसंतों को नवू में उत्पीड़ना और भगाया जा रहा था। रॉबर्ट मरिया ने मंदिर में मिसिसिपी नदी और पूरब का पार करने से थोड़ी देर पहले ही एंडोमेंट प्राप्त कर बहुत ही आशीषित महसूस कर रहे थे। हालांकि वे अपने भविष्य में आगे क्या है के लिए अनिश्चित थे, वे अपने विश्वास और अपनी गवाही से निश्चित थे। छह बच्चों के साथ कीचड़ के संघर्ष कर आयोवा के रास्ते में थे। स्वयं उनकी ये साहसी पथ प्रदर्शन के दल से प्रेरित निर्देशन का अनुसार किया कि कैसे और कब वे आगे रेस्क्यू और बढ़े। हर एक की योजना को बदलाव किया गया। जबरिंगम या बहारा के परिषद के अध्यक्ष ने पुरुषों के लिए स्वयं सेवा यूनाइटेड स्टेट सेना में काम करने की एक बुलाहट को प्रकाशन किया था, जिसे मॉर्मन पल्टन से जाना जाता था। रॉबर्ट हैरिस जूनियर 500 पुरुष मॉर्मन में से एक थे जिन्होंने ब्रिगम यंग की बुलावे पर जवाब दिया। उन्होंने सूची में क्या में रखा था, यह यहाँ तक इसका मतलब था कि अपनी गर्भवती पत्नी और छह बच्चे छोड़कर जाना था। क्यों वह अपने अन्य व्यक्ति ऐसे काम करते हैं? उत्तर मेरे पर दादाजी ने अपने खुद के शब्दों में दिया था। एक पत्र में उन्होंने अपने पत्नी को लिखा था जब पल्टन थोड़े समय के लिए के पास रुकी थी, और उन्होंने लिखा था, मेरे विश्वास बहुत दृढ़ हो गया जो कभी ना था, और जो जब ये चीजों के बारे में सोचते हैं जिससे ब्रिगम यंग ने हमसे कहा था, मैंने उनका विश्वास किया वैसे ही जैसे कि महान परमेश्वर ने मुझे बताया था। थोड़े में वे जानते थे कि परमेश्वर विश्वक्ता को सुन रहा है जैसे दूसरे व्यक्ति कर रहे हैं, इसलिए वे करते हैं। वे जानते हैं उन्हें परमेश्वर की विश्वक्ता द्वारा ले जाया जाता है। उसी पत्र में उन्होंने अपनी कोमल भावनाओं, अपनी पत्नी, बच्चों और उसकी लगातार प्रार्थनाओं के लिए लिखकर व्यक्त किया था कि वे अपने बच्चे आशीषित होंगे। पत्र के आखिरी में उन्होंने ये शक्तिशाली विवरण किया था, हमें उन बातों को कि भूलना नहीं चाहिए जिसे मैंने और तुमने मंदिर प्रभु के मंदिर में देखा और सुना था, अनुभव किया था। उनकी पहले की गवाही से जुड़े कि हम परमेश्वर की परिशुद्धता द्वारा ले जाया जाएगा। यह दो उपदेश मेरे लिए धर्मशास्त्र बन गए। 18 महीनों में बाद पल्टन के साथ जाते हुए रॉबर्ट हैरिस अपनी मरिया के पास सुरक्षा पूर्वक लौट आए। वे सारी जिंदगी सच्चे पुनर्थापित समाज पर टिके रहे। उनके पास 15 पत्र थे जिन्होंने 13 के पुनर्थान से जीवन जिया। मेरी दादी फैनी वाकर ने रामन का अल्बर्ट और कनाडा व 136 पर पोतियों में से एक थे। राधा वाकर को सत्य का बहुत गर्व था कि उनके दादा ने मॉर्मन पल्टन में सेवा की थी, और वे चाहती थी कि उनकी सभी पोता पोती से जाने। अब मैं दादा हूँ, मैं समझ सकता हूँ क्यों उनके लिए यह महत्वपूर्ण था। वे चाहती थीं कि बच्चों का हृदय पिता की तरफ मुड़े। वे चाहती थीं कि परपोती उनके नेक विरासत को जाने, क्योंकि वे जानती थीं ये उनके जीवनों की को आशीष करेगा। हम और अधिक जुड़ते हैं, हम अपने नेक पूर्वजों को महसूस करते हैं, अधिक पसंद करके हम बुद्धिमान और नेकता से हो। ऐसा ही है, हम में से हर कोई अच्छे से आशीषित होगा यदि हम विश्वास और बलिदान और कहानियों को जानते जिससे कि हमारे पूर्वज प्रभु के गिरजे में खड़े जुड़ते हैं। रॉबर्ट मैरी और गिल्फर्ड वुड्रफ को सुसमाचार के पुनर्थान की गवाही शिक्षा की पहली बार सुना था। रॉबर्ट और मरिया जानते थे कि सुसमाचार सत्य है। वे यह भी जानते थे कि चाहे कोई भी परीक्षा या कठिनाई कार्य को कि उन्होंने आज के भविष्यवक्ता के शब्दों को सुना था जो कहते हैं कोई भी बलिदान इतना महान नहीं कि मंदिर की आशीषों को ग्रहण करना। संयुक्त राष्ट्र के दो पौंड के सिक्के में दोनों तरफ दानव के कंधों पर खड़े रहना खोदा गया था। जब वे अपने महत्वपूर्ण पथ प्रदर्शक पुरुषों के बारे में सोचता हूँ, मुझे एहसास होता है कि हम सब दानव के कंधों पर खड़े हैं। यहाँ तक रॉबर्ट हैरिस के पत्र में से चेतावनी आई कि मैं विश्वास करता हूँ कि अनगिनत पूर्वजों के समान संदेश अपने बच्चों और परपोतियों को भेजा था। हमें अनुभव को भूलना नहीं चाहिए। हम जो मंदिर में हमें जो मंदिर में हुए, और हमें वादों आशीषों को भूलना नहीं चाहिए जो कि हमारे पास मंदिर से आती हैं। दूसरा, हमें ये भूलना नहीं चाहिए कि हमें परमेश्वर के भविष्यवक्ता द्वारा ले जाया जाता है। मैं साक्षी देता हूँ, हमें परमेश्वर के भविष्यवक्ता द्वारा ले जाया जाएगा। प्रभु ने अपने गिरजी की पुनरुत्थान अंतिम दिनों के भविष्यवक्ता जोसेफ स्मिथ द्वारा की गई थी। हमें ये भूलना नहीं चाहिए कि हमें परमेश्वर के भविष्यवक्ताओं जोसेफ स्मिथ से लेकर ब्रिंगम और गिरजा के आज के भविष्यवक्ता थॉमस एस मॉन्सन तक सफल अध्यक्ष के अटूट जंजीरों द्वारा ले जाया जाता है। मैं उनका आदर करता हूं और मैं उनसे प्रेम करता हूं। मैं गवाही देता हूं कि आज धरती पर वो ये प्रभु के भविष्यवक्ता हैं। ये मेरी हार्दिक इच्छा है कि मेरे बच्चों और पोता पोती के साथ हम को अपने नेक पूर्वजों की विरासत का आदर करना होगा। वो विश्वासी मॉर्मन पथप्रदर्शक जिन्होंने अपनी इच्छा से सब कुछ बलिदान किया था और अपने परमेश्वर और अपने विश्वास को अपनाया था। मैं प्रार्थना करता हूं कि हम में से प्रत्येक सच्चे विश्वास को जिए जिससे हमारे अभिभावकों ने पोषण किया था। यीशु मसीह के पवित्र नाम से आमेन।
The family home evenings, Sister Perry.
पारिवारिक घरेलू संध्या जो मैं और सिस्टर पैरी हर सोमवार की रात करते हैं, अचानक से बढ़ गई। मेरा भाई, उसकी बेटी बारबरा का भाई और एक भांजी और उसका पति हमारे पड़ोस में आ गए बचपन में, और आज यह एक अवसर है जब मैं अपने परिवार के इतने करीब रहने से आशीषित हुआ हूँ। उस समय मेरा परिवार उसी ब्लॉक में रहता था जिसमें मेरी माँ और उसका परिवार, हमारे घर में दादाजी का घर उत्तर दिशा में अगला दरवाजा था और एमा आंटी का घर दक्षिण दिशा में अलग दरवाजा था। ब्लॉक के दक्षिण दिशा में जोसेफिन आंटी रहती थी और पूर्व दिशा में अंकल आलमा रहते थे। मेरे बचपन के समय में हम अपने रिश्तेदारों के परिवार से हर रोज बातें और काम में खेलते हुए और आपस में मिलने से विशेषण क्षण बांटते थे। ऐसा नहीं हो सकता था कि हम कोई शरारत करें और हमारी माँ को पता ना चले। अब हमारे घर अलग हैं, परिवार के सदस्य दूर चले गए हैं। हालांकि वे एक दूसरे के काफी नजदीक हैं, लेकिन वे पड़ोस में नहीं रहते। फिर भी मुझे यह विश्वास करना होगा कि मेरे बचपन और अब की यह स्थिति कुछ हद तक स्वर्ग के समान है। प्रिय पारिवारिक सदस्यों के साथ करीब रहना यह मुझे याद दिलाता रहता है परिवार अनंत होते हैं। जब मैं बड़ा हो रहा था, मेरे दादाजी के साथ विशेष संबंध था। परिवार में बड़ा बेटा होने के नाते मैं अपने और दादाजी के और दोनों आंटी के घर से सर्दियों में बर्फ हटाता था और गर्मियों में मैदान की देखभाल करता था। दादाजी का अक्सर घर के आगे बैठते थे जब मैं उनके आंगन की सफाई करता था। जब मैंने काम खत्म हो जाता था, मैं उनके आगे वाली सीढ़ियों में बैठता था और उनके साथ घूमता था। वो पल मेरे लिए बहुमूल्य यादें हैं। एक दिन मैंने अपने दादाजी से पूछा कि मुझे कैसे पता चलेगा कि हमेशा सही काम करता हूँ। इतने सारे जीवन के चुनावों में, जैसे मेरे दादाजी हमेशा करते थे, उन्होंने अपने खेती बाड़ी के अनुभव से जवाब दिया। उन्होंने मुझे सिखाया था कि घोड़ों को टीम में बांटना चाहिए ताकि वे मिलकर काम करें। उन्होंने समझाया कि घोड़ों को पता होना चाहिए कि कौन नियंत्रण कर रहा है। घोड़े का नियंत्रण और निर्देशन सुनिश्चित करने के लिए लगाम और जीन आवश्यक है। यदि टीम का एक सदस्य सोचता है कि निर्देशक की इच्छा का पालन करना जरूरी नहीं है, टीम अपनी पूर्ण योग्यता के अनुसार मिलकर काम नहीं कर सकती। अब इस कहानी से सीखे हुए पांच पाठ को जानते हैं। मेरे दादी ने सिखाया था घोड़े को चलाने वाला कौन है। मेरे दादाजी ने माना कि वह प्रभु है। वह ही है उद्देश्य और योजना। वह घोड़ों की टीम और हर एक घोड़े का प्रशिक्षक और निर्माता है। चालक को अच्छी तरह पता है और घोड़ों को यह समझने के लिए कि वह सही कर रहा है, उसे सिर्फ चालक की ओर आज्ञाकारी होना और उसके निर्देशन का पालन करना चाहिए। मेरे दादा की लगाम और जीन की तुलना क्या थी, तब भी मुझे विश्वास था जैसा मैं अब करता हूँ कि मेरे दादाजी मुझे पवित्र आत्मा की प्रेरणाओं का पालन करना सिखा रहे हैं, कि उनकी मन की आंखों में लगाम और जीन आत्मिक थे। एक आज्ञाकारी घोड़े जो कि घोड़ों की अच्छी प्रतिष्ठित टीम का सदस्य होता है, उसने ये कार्य करने के लिए जो चालक घोड़े से करवाना चाहता था, घोड़े को चालक से प्यार भरे खिंचाव से थोड़े अधिक की जरूरत थी। यह प्यार भरा खिंचाव उस हलाके शांत आवाज के हमारी स्वतंत्रता का आदा करते हुए, यह खिंचाव कभी कठोर कभी जबरदस्ती नहीं होता। पुरुष और महिलाएं जो आत्मा की शांत प्रेरणाओं से अनसुना करते हैं, कई बार सीखेंगे जैसा मैं वे उड़ाव पुत्र से सीखा था, आज्ञा भंग करने और अशांत जीवन जीने के स्वाभाविक नीतियों से। वह स्वाभाविक नतीजे द्वारा ही पुत्र दीन बना कि उसे गलती का एहसास हुआ और अपने पिता के वापस लौटकर के आत्मा की फुसफुसाव को सुना। यह पाठ मेरे दादाजी मुझे सिखाते थे कि हमेशा तैयार रहना चाहिए आत्मा के हल्के से खिंचाव के लिए। उन्होंने मुझे सिखाया कि मैं हमेशा ऐसा प्रेरणा पाऊंगा जब कभी भी रास्ते से भटक जाऊं और मैं कभी भी गंभीर गलती का दोषी नहीं पाऊंगा। अगर मैंने पवित्र आत्मा को अपने जीवन के निर्णय लेते हुए अनुमति दी है, जैसा कि याकूब 3:3 में लिखा है, जब हम अपने वंश के में करने के लिए घोड़ों के मुंह में लगाम लगाते हैं तो हम उनकी सारी देह का भी नियंत्रण कर सकते हैं। हमें अपनी आत्मिक लगान को लेकर संवेदनशील होना चाहिए। हमारे प्रभु के एक हल्के से खिंचाव से हमें अपना मार्ग बदलना चाहिए। जीवन में आगे बढ़ने के लिए हमें अपनी आत्मा और शरीर को परमेश्वर की आज्ञाओं द्वारा एक साथ कार्य करने के लिए सिखाना होगा। अगर हम पवित्र आत्मा के संभय प्रबोध का पालन करते हैं, वे हमारी आत्मा और शरीर के उद्देश्य को में एक कर सकता है और हमारे स्वर्गीय पिता के पास जाने में हमारा मार्गदर्शन करेगा। हमारे तीसरे विश्वास के अनुच्छेद में हम आज्ञा का पालन करने का महत्व समझते हैं। हम विश्वास करते हैं कि मसीह के प्रायश्चित द्वारा सारी मानव जाति नियमों के प्रति आज्ञाकारी होने और सुसमाचार की धर्म विधियों के द्वारा बचाई जा सकती है। जिस प्रकार की आज्ञा पालन मेरे दादाजी ने बताया था, घोड़ों के समूह के अनुभव से उसके लिए एक विशेष भरोसा चाहिए और वो है टीम के चालक का पूर्ण विश्वास। जो पाठ मेरे दादाजी ने सिखाया था वह सुसमाचार के पहले सिद्धांत यीशु मसीह में विश्वास को भी दर्शाता है। प्रेरित पौलुस ने सिखाया, अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। उसके बाद पौलुस ने एबल, एनक, नू और इब्राहिम का विश्वास के बारे में पढ़ाने का उदाहरण लिया। उसने इब्राहिम की कहानी पर ध्यान दिया क्योंकि इब्राहिम विश्वासियों का पिता है। पौलुस ने लिखा, विश्वास द्वारा इब्राहिम जब उसे बोला गया तो आज्ञा मानकर ऐसे स्थान के लिए निकल गया जिसे वह विरासत में प्राप्त करने वाला था और यह न जानता था कि मैं किधर जाता हूँ, तो भी निकल गया। विश्वास ही से उससे प्रतिज्ञा की विशेष कि देश वास किस किया जाए। विश्वास से सारा ने आप बूढ़ी होने पर भी गर्भ धारण करने के समर्थ पाई क्योंकि उसने प्रतिज्ञा करने को सच्चा जाना था। हम जानते हैं कि इब्राहिम और सारा के बेटे इसहाक द्वारा इब्राहिम को एक वचन दिया गया था, विशाल वचन वंशज का वादा, आकाश के तारों और समुद्र के तट के बालू की नीति, अग्नि नीति वंश उत्पन्न हुआ और उसके बाद इब्राहिम के विश्वास को परखा गया, जिसकी हम में से कोई कई कल्पना नहीं कर सकता। मैंने कई मौकों पर इब्राहिम और इसहाक की कहानी पर विचार किया है और मैं अभी भी मुझे विश्वास नहीं है कि मैं पूर्ण रूप से इब्राहिम की विश्वसनीयता और आज्ञाकारिता को पूरी तरह समझ सका हूँ। उसके एक सुबह विश्वास से जाने की तैयारी करने की शायद मैं कल्पना कर सकता हूँ, लेकिन पर्वत मोरिया पर पहुँचने की 3 दिन की यात्रा को अपने बेटे इसहाक के साथ कैसे पूरा किया? पर्वत पर आग लगाने के लिए लकड़ियां वह कैसे ले आया? उसके वेदी को कैसे बनाया? इसहाक को बांधने के लिए वेदी का निपटाने से पहले उसे कैसे समझाया होगा कि उसकी बलि दी जानी है, और कैसे उसने अपने बेटे को मारने के लिए चाकू उठाया का बल मिला? उस चमत्कारी क्षण तक जब वह स्वर्गदूत से बताया कि अभी कि अपनी संभव परीक्षा के उत्तीर्ण हो गया है, इब्राहिम को परमेश्वर की आज्ञा को परिपूर्णता से पूरा करने की शक्ति उसके विश्वास से मिली, और फिर प्रभु से स्वर्गदूत ने इब्राहिम को अनुबंध प्रतिज्ञाओं को दोहराया था। यीशु मसीह में विश्वास और संबंधित चुनौतियों में मैं पहचानता हूँ, और इनकी आज्ञाकारिता कुछ लोगों के लिए दूसरों से अधिक कठिन हो सकती है। अपने बहुत सालों के अनुभव के कारण मैं जानता हूँ कि घोड़ों के स्वभाव बहुत भिन्न हो सकते हैं, और इसलिए उनको परीक्षण देना बहुत आसान और कठिन हो सकता है, पर लोगों में विभिन्नताएं होती बहुत अधिक हैं। हम में से प्रत्येक परमेश्वर का बेटा बेटी है, और यह और हमारी एक अलग नश्वरता पूर्व और नश्वरता की कहानी है, इसलिए सब के लिए एक ही उपाय संभव नहीं है, और इसलिए मैं जीवन की प्रयास और गलती करने की प्रकृति और मुख्य रूप से यीशु मसीह के सुसमाचार के दूसरे सिद्धांत पश्चाताप को भी पहचानता हूँ। यह भी सच है कि मेरे दादाजी के जीवन को के दौरान का समय आसान था, विशेषकर सही और गलत के चुनाव के बारे में, जबकि बहुत समझदार और गहरी सोच वाले लोग सोचने की जटिल समय का हल भी जटिल होता है। मैं ऐसा नहीं मानता, बल्कि मेरा मन यह मानता है कि आजकल के जटिल समस्याओं का बहुत ही आसान होता है। जैसा कि मेरे दादाजी ने जवाब दिया था, मेरे सही और गलत में अंतर को जानने के लिए मैं जानता हूं कि मैं आपको दे रहा हूं। वह एक सरल उपाय है। यह शायद आपको शायद सबके लिए काम ना करे, लेकिन मैं इसकी गवाही दे सकता हूं कि वह मेरे लिए कैसा काम करता है। मैं आपको सलाह और चुनौती देता हूं कि मेरे शब्दों पर प्रयोग करें, और अगर आप ऐसा करते हैं, मैं वादा करता हूं कि आप सही का चुनाव कर पाएंगे, और आपको आप पर चुनाव करने की बछार होगी, और उन सवालों का सरल उपाय दे पाएंगे जिन्हें समझने में विद्वान और चतुर को उलझन होती है। अक्सर हम आज्ञाकारी होने का मतलब सोचते हैं कि निष्क्रिय और बेपरवाह होकर आज्ञाओं का या उच्च अधिकारी का पालन करना, मगर आज्ञाकारी होना इससे अधिक हमारे विश्वास का प्रतीक है। हमारे बुद्धिमान और सर्वोच्च अधिकारी की शक्ति में जो परमेश्वर है, जब इब्राहिम ने परमेश्वर के प्रति अटल विश्वास और आज्ञाकारिता दिखाई थी, उसके बेटे के बलिदान की आज्ञा के बावजूद परमेश्वर ने उसे बचा लिया। इसी प्रकार जब हम अपना विश्वास आज्ञाकारी होकर दर्शाते हैं, परमेश्वर अनंत हमें बचाएंगे। वे जो अपने पर ही निर्भर होते हैं और अपनी इच्छा अनुसार और अपने ही शौक के द्वारा चलते हैं, वे बहुत बंधे हुए हैं उन लोगों की तुलना में जो परमेश्वर के इच्छा अनुसार शक्ति और उसके लिए दिए गए पार पर चलते हैं। ऐसा कहा गया है कि वे जो अपने में ही समर्पित होते हैं, वे बहुत छोटा पैकेज बनाते हैं। जो मजबूत अति सक्रिय से आज्ञाकारी होते हैं, वे कमजोर या निष्क्रिय नहीं हो सकते। इन माध्यम के द्वारा हम परमेश्वर में अपने विश्वास की घोषणा करते हैं और अपने आप का स्वर्ग से शक्तियां पाने के योग्य बनाते हैं। आज्ञाकारिता का एक चुनाव है। यह हमारे स्वयं के सीमित ज्ञान और परमेश्वर के असीमित ज्ञान और सर्वशक्ति के बीच चुनाव करना है। मेरे दादा के पाठ के अनुसार यह मेरे मुंह में आत्मिक लगाम को महसूस करना और चालक के अनुसार चलने का चुनाव है। मेरी प्रार्थना है कि अपनी विश्वसनीयता और पुनः स्थापने सुविचार की विधियों को प्राप्त करने के लिए द्वारा अब्राहम के अनुबंध और वंश के वंश में बने। मैं वादा करता हूँ कि अनंत जीवन की आशीषें हर एक के लिए उपलब्ध हैं जो विश्वसनीय और आज्ञाकारी हैं। यीशु मसीह के नाम में आमीन।
थैंक यू ब्रदर्स। The choir and congregation will now stand.
और अब गायक मंडली और कलीसिया खड़ी होकर और मिलकर गाएगी हार्क ऑल ये नेशंस। उसके बाद विनम्रता से एल्डर्स लॉरेंस ई कॉर्ब्रिज, माइकल जॉन यूटे और मार्कस ए आइड्यूकेटस 70 के को सुनेंगे। उनके बाद एल्डर डीट और क्रिस्टोफरसन बोलेंगे 12 प्रेरित के परिषद से।
This is the 184th annual.
ये अंतिम दिनों के संतों का यीशु मसीह का गिरजाघर का 184वीं वार्षिक जनरल सम्मेलन है।
A young boy reads the Bible.
एक युवा लड़का बाइबल पढ़ता है और उसकी आंखें धर्मशास्त्र के एक लेखांश पर ठहरती है. ये एक क्षण है जो संसार को बदल देगा. वह उत्तेजित है जानने के लिए कि कौन सा गिरजा उसे सच्चाई और मुक्ति की ओर ले जाता है. दूसरे सांध्य समाप्त हो, वह बाइबल की ओर मुड़ा और ये वचन पढ़ा, पर यदि तुम में से किसी को बुद्धि की घटी हो तो परमेश्वर से मांगे, जो बिना उलाहना दिए सबको उदारता से देता है और उसको दी जाएगी. वह बार बार उन पर विचार करता है. पहली टिमटिमाती रोशनी अंधेरे से प्रवेश करती है. क्या ये जवाब है गड़बड़ी और अंधेरे से बाहर आने का? क्या ये इतना सरल हो सकता है? परमेश्वर से पूछें और वह जवाब देगा. और जितना उत्तेजित वह है, वह एक शांत कोने की परंतु जानने की और नहीं जाता और जल्दी जल्दी नहीं दौड़ता है. वह केवल 14 साल का है, परंतु जानने की जल्दी में उसे जल्दबाजी नहीं है. ये कोई भी प्रार्थना नहीं थी. वह निर्णय करता है कहाँ जाना है और कब. वह परमेश्वर से बात करने की तैयारी करता है. और फिर वह दिन आया. वह सुबह थी एक सुंदर साफ दिन की. पतझड़ की शुरुआत में 1820 में वह अकेले चलता है पास के शांत जंगलों में, पेड़ के नीचे जहां टावर उसे ऊपर है. वह एक जगह में पहुंचता है जहां वह पहले भी आने के लिए बनाया गया है. वह घुटनों के बल अपने मन की इच्छा को देता है, वरन करते हुए कि आगे क्या होगा. वह कहता है, मैंने एक रोशनी के स्तंभ को साधे अपने सिर के ऊपर देखा, सूर्य के प्रकाश के ऊपर जो नीचे की ओर आई जब तक मेरे ऊपर ना गिरी. जब प्रकाश मेरे ऊपर ठहर गया, मैंने दो व्यक्तियों को देखा जिनका तेज और महिमा वरन से परे थी, मेरे ऊपर हवा में खड़े थे. उनमें से एक ने मुझसे कहा, मेरा नाम पुकारा और बोला, दूसरे की ओर इशारा कर, जोसेफ, ये मेरा प्रिय पुत्र है, इसकी सुनो. केवल 24 साल बाद जोसेफ स्मिथ और उनके भाई हारम, जो यहाँ से शुरू हुआ, उसके लिए मारे गए. विरोध. जोसेफ ने कहा कि वह जब सरदूत ने उससे कहा कि उसका नाम अच्छे और बुरे सारे राष्ट्रों के बीच, सब लोगों के बीच, ये भविष्यवाणी आज भी पूरी हो रही है. अंतिम दिनों के संतों का यीशु मसीह का गिरजाघर से, जो कि संसार भर में फैल चुका है. विरोध, आलोचना और प्रतिद्वंदी साथी है सच के. जब भी सच को प्रकट किया गया है, हमेशा एक बल रहा है उसके विरोध में. शुरुआत से आदम और हवा का आदम की वाटिका में मसीह की सेविकाई तक और आज हमारे दिनों में हमेशा कोशिश जारी रहेगी धोखा उतरने का, विरोध और जीवन की योजना को व्यर्थ कर देने की. सबसे विशाल धुएं के बढ़ते हुए बादल को देखें, जिसके ऊपर सबसे ज्यादा गंदगी जाती है, जिसे फेंका जाता है उस पर, जिसे कभी विरोध, चुनौती और अस्वीकार मारा, छोड़ा और सूली पर चढ़ाया गया. एक जो कि सब चीजों के नीचे आया और वह आप सच को पाएंगे, परमेश्वर का पुत्र, मानव जाति का उद्धार करता. उन्होंने उसे अकेला क्यों नहीं छोड़ा? क्यों? क्योंकि वह सच है और सच का हमेशा विरोध होगा. और फिर उसे देखो जो यीशु मसीह के दूसरे नियम और धर्मशास्त्र को लाया. उसे देखो जो कि सुसमाचार को पूर्ण करने का माध्यम था और जिसके द्वारा यीशु मसीह के गिरजाघर को फिर से धरती पर पुनः स्थापित किया गया. उसे देखो और अपेक्षा करो उड़ते हुए गंध को ढूंढने की. उसे अकेला क्यों ना छोड़े? क्यों? क्योंकि उसने सच को पढ़ाया और सच का हमेशा विरोध होगा. प्रकटीकरण को जोसेफ स्मिथ के ऊपर उड़ेला गया. पुष्टि की गई कि वह परमेश्वर का भविष्यवक्ता था, चलिए अब उनमें से कुछ को देखते हैं, उनके द्वारा कुछ के प्रकाश और सच्चाई को प्रकट करते हैं। देखते हैं जो एकदम चमकता है, उसके विपरीत सामान विश्वासों में हमारे और इसके दिनों में। परमेश्वर एक व्यक्तिगत उत्कर्ष व्यक्ति, एक अनंत पिता है, वह हमारा पिता है। परमेश्वर पिता, यीशु मसीह और पवित्र आत्मा सब भिन्न हैं। अब इंसान से ज्यादा हैं। आप परमेश्वर अनंत पिता के बच्चे हैं और उसकी तरह बने। अगर आप उसके पुत्र हैं, पश्चाताप, धर्म विधि को प्राप्त करना, पवित्र आत्मा की भेंट और अंत तक काम करना। आज यीशु मसीह का गिरजाघर मूल रूप से वही गिरजा है जो उसने अपनी सेविकाई के दौरान स्थापित किया, भविष्यवक्ता और प्रेरितों के साथ, मलकीसेदेक और लेविटिकल पुरोहिती, एल्डर, उच्च याजक, डीकन, शिक्षक, धर्मध्यक्ष और 70, जैसा वर्णन बाइबल में किया गया है। पुरोहित्य अधिकार को धरती से ले लिया गया था उद्धारकर्ता की मृत्यु के बाद और उसके प्रेरितों से, और हमारे दिनों में इसे पुनः स्थापित किया गया है। प्रगटीकरण बंद नहीं हुआ है और स्वर्ग बंद नहीं हुए हैं। परमेश्वर भविष्यवक्ताओं से आज बोलता है और वे मुझसे और आपसे भी बोलता है। बहुत कुछ है इस जीवन के बाद स्वर्ग और नरक के अलावा। वहाँ महिमा की प्रक्रिया है और हम इस जीवन में क्या करते हैं उससे मान्य रखती है। केवल सिर्फ मसीह पर विश्वास करना, हमें उसे अपनी हर सोच में रखना चाहिए। वो सब करना चाहता है जो हम उसके नाम में कर सकते हैं। हमेशा उसे याद रखना चाहिए और उसकी आज्ञाओं का पालन करना चाहिए ताकि हम उसकी आत्मा को हमेशा अपने साथ रख सकें। करोड़ों हैं जो सुसमाचार के बिना जीते और मरते हैं और अनुबंधों की मुक्ति के बिना खो जाते हैं। मसीह के प्रायश्चित से सारी मानव जाति बचाई जाएगी। आज्ञाकारिता द्वारा जो कानून और सुसमाचार के अनुबंध हैं, उन्हें मृत और जीवित दोनों के लिए प्रदान किया गया है। सभी कुछ जन्म से शुरू नहीं हुआ। आप परमेश्वर के साथ उसकी उपस्थिति में रहते थे, उसके पुत्र और पुत्री बनकर और नश्वर जीवन के लिए तैयारी करते थे। विवाह और परिवार सिर्फ परंपरा पुरुष के लिए नहीं है कि हम मृत्यु में अलग हो जाएंगे। वह अनंतता के लिए अनुबंधों के द्वारा परमेश्वर के साथ हमने बनाई है। परिवार एक रूप में स्वर्ग है और ये एक ही भाग है प्रकटीकरण की बाढ़ का जो कि उंडेला गया जोसेफ स्मिथ पर। ये सब कहां से आया? ये प्रकटीकरण वह है जो अंधेरे को प्रकाश देता है, स्पष्टता से शक को, और जो करोड़ों लोगों को प्रेरित और सुधारता है, जो कि उचित है कि उसने खुद से सपने देखे या उसके पास स्वर की मदद थी, जो धर्मशास्त्र उसने दिए, क्या वो मनुष्य के वचन लगते हैं या परमेश्वर के वचन? इसके बारे में कोई भी वाद विवाद नहीं है जो जोसेफ स्मिथ ने सफलतापूर्वक संपन्न किया और कैसे उसने किया, क्या किया और क्यों। और ज्यादा विकल्प नहीं थे। वह या तो ढोंगी था या भविष्यवक्ता। या तो उसने वह किया जो अकेले किया या उसके पास स्वर्ग से मदद थी। सबूत को देखो, परंतु सारे सबूतों को देखो, उसके पूरे जीवन को देखो, सिर्फ एक टुकड़े को नहीं। सबसे जरूरी वही करो जो युवा जोसेफ ने किया और परमेश्वर से पूछो, जो मानव को बिना उलाहना दिए सबको उदारता से देता है और उसको दी जाएगी। सिर्फ इसी से आप मॉर्मन की पुस्तक और जोसेफ स्मिथ का सच नहीं सीख सकते। ये रूप है सारी वस्तुओं का और उसके सच जानने के। जोसेफ स्मिथ परमेश्वर का एक भविष्यवक्ता था, जैसे कि थॉमस एस मॉन्सन आज है। जोसेफ स्मिथ से परमेश्वर के राज्य की कुंजियां फिर से प्राप्त हुई। वचनबद्ध होना मनुष्य का धरती से और सुसमाचार का लुढ़कना पत्थर की तरह जो कि पहाड़ी से काटा गया हो हाथों के बिना, जब तक कि वे पृथ्वी को न भर दे। परमेश्वर हमारा अनंत पिता है और यीशु हमारा मसीह है। हम उसकी आराधना करते हैं। किसी की भी तुलना उसकी रचना, मुक्ति की योजना और परमेश्वर के मेमने के प्रायश्चित के बलिदान से नहीं हो सकती। इस युग में हम पिता की योजना और प्रायश्चित के फलों का सेवन सिर्फ उसकी आज्ञाओं और अनुबंधों के पालन से कर सकते हैं। जोसेफ स्मिथ द्वारा पुनः स्थापित सुसमाचार से कर सकते हैं। मैं गवाही देता हूँ, उनकी परमेश्वर अनंत पिता और यीशु मसीह संसार का उद्धार करता, और मैं ये सब कहता हूँ यीशु मसीह के नाम में, आमीन।
Shortly following after General Conference in October 2007, one of my brethren told me.
अगर हम ध्यान नहीं देते हैं, हम आत्मिकता से स्थायी बातों के पीछे भागते हैं। अक्टूबर 2007 में जलन सम्मेलन के तुरंत बाद मेरे एक भाई ने मुझसे बताया कि ये लगभग 7 वर्षों पहले मुझे इसका अनुभव एक बार फिर से हुआ था। मैंने उससे सांत्वना दी और उसे बताया कि वे मेरे 7 साल उपवच थे। मैं उस पर विचार करूंगा। अच्छा, मैं यहाँ हूँ। मेरे 7 साल की उपवच का अंत आ गया है। पिछले जनवरी मेरी प्रियतम ग्रेस और मुझे फिलीपींस में, जहाँ एक बड़ा तूफान और एक बड़ा भूचाल आने से तबाही मच गई थी, मैं आकर सदस्य से भेंट करने का कार्य दिया गया था। हम आनंदित हुए क्योंकि कार्य सौंपा गया हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर था और हमारे प्रिय स्वर्ग में पिता के दयालुता और महिमा का एक विधान था। ये हमारी उनसे हमारे प्रेम और चिंता करने की कुछ व्यक्तिगत संपत्ति की नजदीकियों को प्रदान करता है। बहुत से सदस्य जिनसे हम पहले अभी भी अस्थाई टेंटों, कम्युनिटी सेंटरों, गिरजाघरों के सभा ग्रहों में रह रहे हैं, जिन घरों से भेंट करने गए थे कि छत या तो आधी है या पूरी ही छत नहीं है। लोगों के पास फिर से शुरू करने के लिए कुछ ज्यादा नहीं है। जो कुछ थोड़ा था वह बह गया, तथापि थोड़ी सी सहायता जो उन्हें मिली थी के लिए वे आभारी से हुए और आनंदित थे। और उनकी पूरी परिस्थिति में होने के बावजूद अच्छे से खुशहाल थे। जब हमने पूछा कि कैसे वह सामना कर रहे हैं, प्रत्येक का जवाब एक साथ गूंजा, हम अच्छे हैं। प्रत्यक्षता से उनका यीशु मसीह में विश्वास उन्हें आशा देता है कि समवित से सब कुछ ठीक हो जाएगा। घर के बाद घर, टेंट के बाद टेंट, बहन टेक के, और मुझे उन विश्वासी संतों ने सिखाया था, विपत्ति या त्रिसादी की समस्याओं में प्रभु हमें और हमारी प्राथमिकता के रास्ते दोबारा से केंद्रित करता है। अचानक से सभी कुछ, वो सब वस्तुओं की चीजें जिनको पाने के लिए कठिन परिश्रम हमने किए थे, महत्वपूर्ण नहीं रहते। पानी के पास चले जाने के बाद, और एक अच्छी बहन ने इसे इस तरह से रखा है, पानी के पास चले जाने के बाद और अब समय शुरू हुआ है सफाई करने का। और मैंने अपने घर के चारों तरफ देखा और सोचा, हाय, इतने सालों में मैंने इतनी सारी रद्दी को इकट्ठा किया था। मैं अनुमान लगाता हूँ कि इस बहन को बेहतरीन दृष्टिकोण प्राप्त हुआ है और इसलिए सावधानी से नियंत्रण लेने लगी कि कौन सी वस्तु की जरूरत है और किन के बिना वह सच में रह सकती है। इन बहुत से वर्षों में कई सदस्यों के साथ काम करते हुए हमने आत्मिक शक्ति का अनुरोध बहुतायात से होते हुए देखा है। हमने दोनों बहुतायात से होते हुए और सामग्री संपत्ति के अभाव को इन विश्वासी सदस्यों के बीच रहते हुए देखा है। जरूरत के परे हम में से बहुत पैसा कमाते हैं और अपने परिवारों के समर्थन करने के लिए दुनिया भर का कुछ सामान मुहैया करते हैं। हमें हमारे अच्छे समय का कुछ भाग और ध्यान देने की आवश्यकता होती है। इसका कोई अंत नहीं होता है कि संसार क्या देता है, तथा यह महत्वपूर्ण होता है कि हमारे पास बहुत है कम को हम पहचान सकें। अगर हम ध्यान नहीं देते हैं, हम आत्मिकता से ज्यादा स्थायी बातों पर के पीछे भागते हैं, हमारा आत्मिकता और अनंत के लिए अनुसरण करना बात की बात हो जाएगी बजाय दूसरों के। दुखद है, यहाँ अधिक से अधिक आधुनिक चीजों को पाने का सुझाव बढ़ता है और अधिक जटिल होता रहता है। हम कैसे सुनिश्चित करते हैं कि हम इस पद की ओर खींचे नहीं जाते हैं? नेफी ने यह सलाह दी, इसलिए इसका कोई मूल्य नहीं, उसके पीछे पैसे मत व्यय करो, उसके लिए परिश्रम मत करो, परिश्रम के साथ मेरी सुनो और जिन बातों को मैंने कहा है उनको याद रखो और इसराइल के पवित्र प्रभु के पास आओ और वह खाओ जो कभी नष्ट नहीं होता और ना ही भ्रष्ट होता है और अपनी आत्मा को इस विलुप्ति में आनंद बनाने दो। मैं आशा करता हूँ हम में से कोई भी उस पर पैसे खर्च करना या ये परिश्रम करना चाहेगा जिससे हम संतुष्ट नहीं होते हैं। उद्धारकर्ता ने यहूदियों को और नफाइटियों को दोनों निम्नलिखित शिक्षा दी थी, अपने लिए पृथ्वी पर धन मत एकत्र करो, यहाँ कीड़े और मूर्छा उन्हें बिगाड़ सकते हैं और जहाँ चोर सेंध लगाकर उसे चुरा सकते हैं, परंतु अपने लिए स्वर्ग में धन इकट्ठा करो जहाँ ना तो कीड़े और ना ही मूर्छा बिगड़ते हैं और जहाँ चोर न सेंध लगाते हैं और ना ही चुराते हैं, क्योंकि जहाँ तुम्हारा धन है वहाँ तुम्हारा मन भी लगा रहेगा। दूसरी जगह में उद्धारकर्ता ने यह दृष्टांत दिया, किसी धनवान की भूमि में बड़ी उपज है। तब वह अपने मन में विचार करने लगा, मैं क्या करूं क्योंकि मेरे यहाँ जगह नहीं है अपनी उपज इत्यादि रखूं। और उसने कहा, मैं यह करूंगा, मैं अपनी भिखारियां तोड़कर उनमें से बनाऊंगा और जहाँ अपना सब अनंत और संपत्ति रखूंगा और अपने प्राण से कहूंगा कि प्राण तेरे पास बहुत से वर्षों के लिए बहुत सी संपत्ति रखी है, चैन कर खा पी सुख से रहे। परंतु परमेश्वर ने उससे कहा, हे मूर्ख, इसी रात तेरा प्राण तुझ से ले लिया जाएगा, तब तू कुछ ना तो इकट्ठा कर सकेगा और ना इसको तू ले सकेगा। ऐसा ही वह मनुष्य भी है जो अपने लिए धन बटोरता है परंतु परमेश्वर की दृष्टि में धनी नहीं है। हम सभी जानते हैं कि संसारिक धन की सूची घमंड, संपत्ति, वस्तुओं की चीजें, बल और इंसान के गौरव से बनी होती है। ये किसी भी योग्य समय का और आकर्षण नहीं होता है, तो बजाय मैं धन केंद्रित करूंगा उस धन पर जो स्वर्ग में संगठित है। स्वर्ग के कुछ धन क्या है जिसे हम अपने लिए ले सकते हैं? शुरुआत के लिए हमारे लिए ये अच्छा होगा कि हम मसीह समान विश्वास, आशा, इंसानियत और उदारता लाएं। हमें लगातार सलाह दी जाती है कि प्राकृतिक स्वभाव को अलग कर एक बच्चे के समान हमारे लिए उद्धारकर्ता की चेतावनी है कि उसकी तरह और हमारे स्वर्गीय पिता की तरह निर्दोष बने। दूसरा, हमें अधिक विशेष समय रखने और परिवार के रिश्तेदारी को मजबूत करने का प्रयास करने की जरूरत है। इन सब के बाद परिवार परमेश्वर द्वारा नियुक्त किया गया है, ये इकाई समय और अनंत के लिए अधिक महत्वपूर्ण है। तीसरा, दूसरों की सेवा करना मसीह के अच्छे अनुयायी का प्रतीक है। उसने कहा कि तुम्हारे जो इन छोटे से भाई में से किसी एक के साथ किया वह मेरे साथ किया। चौथा, मसीह के सिद्धांतों को समझना और अपनी गवाही को मजबूत करने का श्रम है जो कि सच्ची खुशी और संतोष लाता है। हमें लगातार मसीह के वचनों को जो धर्मशास्त्र में पाए जाते हैं, जीवित भविष्यवक्ता के वचनों अध्ययन करने की आवश्यकता है, क्योंकि देखो मसीह की वाणी तुम्हें बतलाएगी कि तुम्हें क्या करना चाहिए। मैं समापन में 73 आयु की एक विधवा की कहानी के साथ करता हूँ जिससे हम फिलीपींस के दौरान मिले थे। जब बहुटोल टापू में भूकंप आया था, घर के जिस उसने और उसके मृत पति ने भूमि के टुकड़ों पर कठिनाई से बनाया था, ने उसकी बेटी और पोते को मार डाला था। अब अकेली है, उसे अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए काम करना पड़ता है। उसे कपड़े धोने का काम शुरू किया है और पहाड़ी के ऊपर एक नीचे पानी लेने के लिए कोई दफा आती है। जब हम उनसे मिले थे वह तब टेंट में ही रहती थी, ये उसके शब्द है। एल्डर मैंने सब कुछ ग्रहण किया है जिससे मुझे प्रभु गुजरना चाहते हैं। मुझे कोई मलाल नहीं है, मेरे पास मंदिर संस्कृति का धन है और उसे मैं अपने लिए नीचे रखती हूँ। कृपया जानिए, मैं पूरा दशमांश अपने कपड़े धोने की कमाई से देती हूँ, चाहे कुछ भी हो। मैं गवाही देता हूँ कि हमारी प्राथमिकता प्रवृत्ति झुकाव अभिलाषा भूख और आवेश का हमारे अगली संपत्ति से सीधा संपत्त होता है। हमेशा उधारकर्ता के वचनों को याद रखना चाहिए क्योंकि जहाँ तुम्हारा धन है वहाँ तुम्हारा मन भी लगे रहेगा। मैं प्रार्थना करता हूँ हमारे यहाँ पर है यीशु मसीह के नाम में, आमीन।
The other day, my 10-year-old son was
सच को प्रकट करेगा उन्हें जो इसे खोजते हैं जैसे कि धर्मशास्त्रों में निर्धारित किया गया है। हाल ही में मेरा 10 वर्ष का पुत्र मानव मस्तिष्क के विषय में इंटरनेट पर पढ़ रहा था। एक दिन शल्य चिकित्सक बनना चाहता है। यह आसानी से देखा जा सकता है कि वह मुझसे अधिक समझदार है। हम इंटरनेट पसंद है। हम घर पर अपने परिवार और दोस्तों से सोशल मीडिया, ईमेल और अन्य तरीकों से संवाद करते हैं। मेरे बच्चे अपना मूल्य से बहुत स्कूल का समय इंटरनेट से माध्यम करते हैं। जो भी प्रश्न हो, यदि हमें ज्यादा जानकारी चाहिए तो हम ऑनलाइन खोज लेते हैं। कुछ क्षणों में हमारे पास बहुत सी जानकारी होती है। यह अद्भुत है। इंटरनेट सीखने के बहुत से अवसर प्रदान करता है। बहुत शैतान हमें अंतत दुखी जाता है और यह वस्तुओं के उद्देश्य का असली रूप बिगाड़ता है। वह इस बढ़िया उपकरण को संदेह और डर से बढ़ावा देता है और नष्ट करता है विश्वास और आशा को। इंटरनेट पर इतना कुछ उपलब्ध होने से जरूरी है हर एक को ध्यान से विचार कर उसके प्रयासों को कहां लागू करें। जानकारी की छानबीन में शैतान हमें व्यस्त, अन्य मानस्थ और दूषित कर सकता है। इसमें से अधिक नीरा कचरा हो सकता है। किसी को भी कचरा नहीं खोजना चाहिए। इस निर्देश को सुने, धर्मशास्त्रों से जो मिलता है। प्रभु की आत्मा प्रत्येक मनुष्य को दी गई है ताकि वे अच्छे और बुरे की जान सके। इसलिए मैं तुम्हें निर्णय लेने का तरीका बताता हूँ क्योंकि हर चीज को अच्छा करने के लिए आमंत्रित करती है और मसीह में विश्वास करने के लिए उकसाती है। वह मसीह के सामर्थ्य और विश्वास द्वारा भेजी जाती है। इसलिए तुम जान सकते हो कि यह परमेश्वर की ओर से है। वास्तविक अर्थों में हम वही दुविधा का सामना करते हैं जिसका सामना जोसेफ स्मिथ ने अपनी युवावस्था में किया था। हम भी अक्सर अपने आप में बुद्धि की घटी को पाते हैं। परमेश्वर के राज्य में सच की खोज को सहारा प्रोत्साहित किया जाता है और किसी भी तरह से दमित या उसकी और आशंका नहीं जताई जाती। गिरजा घर के सदस्यों को खुद प्रभु ने दृढ़ता से सलाह दी है कि वे ज्ञान को खोजें। उन्होंने कहा, खोजो तुम लगन से, खोजो सबसे अच्छी किताबों में से ज्ञान के शब्दों को, ज्ञान को खोजो बराबर पढ़ने से और उसके साथ ही विश्वास रखने से। तुरंत हम कैसे सच को इस दुनिया में पहचान सकते हैं जो कि लगातार कुंठित हो रहा है आक्रमणों से जो परमेश्वर की वस्तु से संबंधित है? धर्मशास्त्र में हमें सिखाता है कैसे। प्रथम, हम सच जान सकते हैं इसके फलों को देखकर। पहाड़ पर अपने महान धर्मोपदेशक के दौरान प्रभु ने कहा, इसी प्रकार हर एक अच्छा पेड़ अच्छा फल लाता है और निकम्मा पेड़ बुरा फल लाता है। सो उनके फलों से तुम उन्हें पहचान लोगे। भविष्यवक्ता मॉर्मन ने वही सिद्धांत सिखाया कि उनके कार्य से तुम उन्हें जानोगे, क्योंकि यदि उनके कार्य अच्छे हैं वे भी अच्छे हैं। हम आमंत्रित करते हैं सबको इस गिरजे के फलों और कार्य को पढ़ने के लिए। जो सच में रुचि रखते हैं वह पहचान सकेंगे उस बदलाव के अंतर को जो गिरजा और उसके सदस्य द्वारा उन समुदाय में किया जा सकता है जहां वे बसे हैं। वे ध्यान देंगे उस सुधार की ओर जो उनके जीवनों में उनके वचनों के अनुसरण से हुआ है। जो इन फलों का परीक्षण करेंगे वह समझ आएंगे कि गिरजे के फल स्वादिष्ट और इष्ट है। द्वितीय, वचन का अपने ऊपर प्रयोग कर हम सच को खोज सकते हैं। भविष्यवक्ता आलमा ने सिखाया, अब हम वचन की तुलना एक बीत से करेंगे। अब यदि तुम स्थान दो तो तुम्हारे हृदय में एक बीज बोया जा सकता है। यदि वह सच्चा बीज है, यदि तुम अपने उसे अपने अविश्वास के कारण फेंकते नहीं हो, तुम देखो वह तुम्हारी छाती में बढ़ने लगेंगे और तुम स्वयं ही कहने लगोगे, यह एक अच्छा बीज है, यह मेरी आत्मा को विकसित करने लगा है, हाँ यह मेरी समझ को बढ़ाने लगा है, हाँ उसका स्वाद मुझे अच्छा लग रहा है। अब देखो क्या इससे तुम्हारा विश्वास नहीं बढ़ेगा? हाँ यह तुम्हारे विश्वास को मजबूत करेगा। हर एक बीज अपने ही समान फल लाता है। कितना शानदार निमंत्रण प्रभु ने भविष्यवक्ता द्वारा है। इसकी तुलना एक वैज्ञानिक प्रयोग से की जा सकती है। हमें आमंत्रित किया गया है उसके वचन के परीक्षण के लिए। हमें मापदंड दिए गए हैं और हमें परीक्षण के परिणामों के बारे में बताया गया है। यदि हम निर्देशकों का पालन करें, इसलिए धर्मशास्त्र हमें सिखाता है कि हम सच उनके फलों का निरीक्षण कर जान सकते हैं। यह व्यक्तिगत रूप से उनका योग कर के अपने मन में वचन को जगह देकर और जुताई कर एक बीज के समान।
Knowledge of whatsoever things we ask in faith with an honest heart and believing that we shall receive. And the Lord tells us how we will receive.
और प्रभु हमें बताता है कि हमें प्रकटीकरण कैसे प्राप्त होगा। वे कहता है कि मैं तुम्हारे दिमाग और तुम्हारे मन में बताऊंगा पवित्र आत्मा द्वारा, जो कि तुम पर आएगा और तुम्हारे मन में बस जाएगा। इसी प्रकार हमें सिखाया जाता है कि प्रकटीकरण विश्वास द्वारा मांगने से प्राप्त होता है, एक निष्कपट मन से और विश्वास से ही कि हमें प्राप्त होगा। ध्यान दे, प्रभु ने यह बहुत साफ किया, हमें आगाह किया कि याद रखो कि विश्वास के बिना तुम कुछ नहीं कर सकते। इसलिए विश्वास में मांगो, विश्वास को कर्म की आवश्यकता है। कर्म वैसे ही अपने दिमाग में पढ़कर फिर प्रभु से प्रार्थना में पूछो कि यदि यह सही है। प्रभु ने कहा, यदि वे सही है तो मैं तुम्हारी छाती के अंदर में एक जलन पैदा करूंगा जिससे तुम्हें महसूस होगा कि ये सही है। किंतु यदि वे सही नहीं है तो तुम्हें ऐसी कोई भी भावना ना होगी, परंतु तुम्हारी सोच में व्योमा होगा कि जो कि तुम्हें गलत चीज को भुला देगा। यदि विश्वास के साथ कर्म नहीं है तो वह अपने आप में निष्प्राण है। इसलिए विश्वास से मांगो, ना कि अस्थिर से। मेरा एक दोस्त है, हमारे विश्वास का नहीं है, जिसने मुझे स्पष्ट किया कि वह धार्मिक व्यक्ति नहीं है, ना कि तो धर्मशास्त्र पढ़ता है ना ही प्रार्थना करता है, क्योंकि उसका कहना है कि उसे परमेश्वर के वचन समझ नहीं आते, ना ही वह विश्वसनीय है कि परमेश्वर जीवित है। यह भाव स्पष्ट करता है कि उसके अभाव को धार्मिकता में ले जाता है, प्रकटीकरण के विपरीत मार्ग, जैसा कि आलमा द्वारा समझाया गया है। जो अपने हृदय को कठोर नहीं करेगा उसे वचन का अधिकांश दिया जाएगा।
आलमा
मुसाया ने पुत्र उदाहरण है उस सिद्धांत के, जहां विश्वास को कर्म से करने की आवश्यकता है। मॉर्मन की पुस्तक में हम पढ़ते हैं, उन्होंने निकष निष्ठपूर्वक धर्मशास्त्र में खोज रखी प्रभु तक, ताकि परंतु यह सब कुछ नहीं था क्योंकि बहुत प्रार्थना और उपवास किया था। इसलिए उनके पास भविष्य की आत्मा प्रकटीकरण की आत्मा थी। समान रूप से इस प्रक्रिया में एक निष्कपट मन से मांगना अवश्य है। यदि हम ईमानदारी से सच को खोज रहे हैं तो हम अपनी शक्ति से इसे खोजने के लिए सब कुछ करेंगे। इसमें शामिल हो सकता है धर्मशास्त्र को पढ़ना, गिरजाघर जाना और अपना सब करना परमेश्वर की आज्ञाओं को मानने के लिए। इसका अर्थ यह भी है कि हम इच्छुक हैं परमेश्वर की इच्छा करने को जब तक इनका अनुभव करते हैं। जोसेफ स्मिथ की क्रिया जब वह ज्ञान को खोज रहे थे एक उत्तम उदाहरण है कि एक निष्कपट मन होने का अर्थ क्या होता है। उन्होंने कहा था कि वह जानना चाहते थे कि कौन सा संप्रदाय सच्चा है, ताकि जान सके कि किसमें सम्मिलित होना है। यहाँ तक कि प्रार्थना करने से पहले वह तैयार थे उस कार्य को करने के लिए उनका उत्तर उन्हें प्राप्त होना था। हमें विश्वास से मांगना चाहिए कि निष्कपट मन से, परंतु यही सब कुछ नहीं है। हमें विश्वास करना चाहिए कि हमें प्रकटीकरण प्राप्त होगा। हमें प्रभु में विश्वास करना चाहिए और उनके वादों में आशा। याद रहे कि जो लिखा है, यदि तुम में से किसी को बुद्धि की घटी हो तो परमेश्वर से मांगे, जो बिना उलाहना दिए सबको उदारता से देता है और उसको दी जाएगी। कितना प्रशंसनीय वादा है। मैं आमंत्रित करता हूं आपको सच खोजने के लिए जिनमें से किसी भी विधियों से, किंतु विशेष रूप से परमेश्वर की व्यक्तिगत प्रकटीकरण से। परमेश्वर उन्हें सच प्रकट करेगा और उसे ढूंढेंगे जैसा कि धर्मशास्त्र से निर्धारित किया गया है। इसमें बहुत प्रयास की आवश्यकता होती है जिसकी अपेक्षा की इंटरनेट पर खोजे, परंतु यह मूल्य है। मैं अपनी गवाही देता हूँ कि यह यीशु मसीह का सच्चा गिरजा है। मैंने इसके फलों को समुदाय में देखा है और हजारों के जीवन में परिवार के सदस्यों के सहित, इसलिए मैं जानता हूं कि यह सच है। मैंने भी स्वयं कई वर्षों तक वचन को अपने जीवन में अजमाया है और इसके भाव का अपनी आत्मा पर महसूस किया है, इसलिए मैं जानता हूं कि यह सच्चा है। परंतु इससे महत्वपूर्ण बात मैंने सीखा है, इसकी सच्चाई को अपने लिए पवित्र आत्मा की शक्ति के प्रकटीकरण द्वारा, इसलिए मैं जानता हूं कि यह सच्चा है। मैं आमंत्रित करता हूं कि आप सबको यह करने के लिए, यीशु मसीह के नाम में, आमीन।
यीशु के शिष्यों ने अत्यधिक निराशा को महसूस किया और उन्हें लगा कि वे भी पराजित हो गए थे जब उन्होंने दुख उठाया और सलीब पर मर गया और उनके निर्जीव शरीर कब्र में रख दिया गया। जो उद्धारकर्ता ने अपनी मृत्यु और जी उठने के विषय के बारे में बार बार कहा था, उसके बावजूद वे समझ नहीं पाए थे। हालांकि उसके सूली पर चढ़ाए जाने के अंधकार पूर्व दोपहर के तुरंत बाद उनके पुनरुत्थान का आनंददायक सवेरा हुआ था, लेकिन यह आनंद तभी आया था जब शिष्यों ने पुनरुत्थान को अपनी आंखों से देखा, क्योंकि स्वर्गदूतों की घोषणा कि वह जी उठा है पहले उनकी समझ से परे थी। यह ऐसा कुछ ऐसा था जो पहले कभी नहीं हुआ था। मरियम मैग्डलिनी और अन्य विश्वसनीय स्त्रियां उद्धारकर्ता की कब्र पर रविवार की सुबह प्रभु के शरीर का अभिषेक करने के लिए मसाले और तेल लेकर आई थी। वे जल्दी से सबसे पहले इस काम को पूरा करना चाहती थीं। इस विशेष सुबह को जब वे वहां पहुंची तो उन्होंने कब्र का पत्थर हटा हुआ और दो स्वर्गदूतों की घोषणा करते पाया। तुम जीवित को मरे हुए में क्यों ढूंढती हो? वह यहाँ नहीं परंतु जी उठा है। स्मरण करो कि उसने गलील में रहते हुए तुमसे क्या कहा था, कि अवश्य है कि मनुष्य का पुत्र पापियों के हाथ में पकड़वाया जाए और क्रूस पर चढ़ाया जाए और तीसरे दिन जी उठे। आओ यह स्थान देखो जहाँ प्रभु पड़ा था, और शीघ्र जाकर उसके चेलों से कहो कि वह मृतकों से जी उठा है। जैसा कि स्वर्गदूतों ने आदेश दिया था, मरियम मग्दलिनी कब्र के अंदर गई, लेकिन लगता है कि उसने केवल यह देखा कि प्रभु शरीर वहां नहीं था। वह प्रेरितों को बताने के लिए तेजी से दौड़ी और पथरस और यूहन्ना को मिलने पर बोली, वे प्रभु को कब्र से निकाल ले गए हैं और हम नहीं जानते कि उसे कहां रख दिया है। पथरस और यूहन्ना उस जगह गए और पाया कि वास्तव में कब्र खाली थी और कपड़े पड़े देखे, और वह अंगोछों जो सिर से बंधा हुआ था कपड़ों के साथ पड़ा हुआ नहीं परंतु एक जगह लपेटा हुआ देखा। यूहन्ना निश्चित रूप से पुनरुत्थान के शानदार संदेश को समझने वाला प्रथम व्यक्ति था। उसने लिखा है कि वह भीतर गया और देखकर विश्वास किया, जबकि अन्य उस समय तक पवित्र शास्त्र की वह बात न समझ पाए थे कि उसे यीशु को मरे हुए से जी उठना होगा। पत्रस और यूहन्ना चले गए, लेकिन मरियम शोक में डूबी वहीं बैठी रही। इस बीच स्वर्गदूत वापस लौटे और कोमलता से पूछा, हे नारे तू क्यों रोती है? उसने उनसे कहा, वे मेरे प्रभु को उठा ले गए हैं और मैं नहीं जानती उन्हें कहां रखा गया है। उस क्षण पुनः जीवित उद्धारकर्ता पीछे खड़ा था और उसे कहा, हे नारी तू क्यों रोती है, किसको ढूंढती है? उसने माली समझ कर उससे कहा, हे महाराज यदि तूने उसे उठा लिया है तो मुझसे कहे कि उसे कहां रखा है और मैं उसे ले जाऊंगी। ई टैलमिज ने लिखा था, वह यीशु उसका प्रिय प्रभु था जिसने उसने बात की, लेकिन उसे मालूम न था। उसके जीवित होठ से एक शब्द से उसके पीड़ादायक दुख को अत्यंत हर्ष में बदल दिया था। यीशु ने उससे कहा, मरियम, वह आवाज, वह स्वर, वह कोमल उच्चारण जो उसने पहला सुना और उससे लगाव रखा था, ने कष्टदायक पीड़ा को भूलने में मदद की थी। वह पीछे मुड़ी और प्रभु को देखा। अत्याधिक खुशी से उसने उसे गले लगाने के लिए बाहें उठाकर प्रेम भाव सम्मान से बोली, रब्बूनी अर्थात मेरे प्यारे गुरु। और इस प्रकार यह धन्य नारी पुनः जीवित मसीह को देखने और उसके साथ बातचीत करने वाली प्रथम मनुष्य बन गई। बाद में उसी दिन वह पत्रस को जेरूसलम में या उसके निकट दो चेलों की इमाउस के मार्ग में दिखाया गया था और शाम को प्रेरितों में से 10 और अन्य के बीच में अचानक ये कहते हुए प्रकट हुआ, मेरे हाथ और मेरे पांवों को देखो कि मैं वही हूँ, मुझे छू कर देखो क्योंकि आत्मा के हड्डी मांस नहीं होता जैसा मुझ में देखते हो। फिर उनका शक दूर करने के लिए, जबकि आनंद के मारे उनको प्रतीति ना हुई और आश्चर्य करते थे, उसने उनके समक्ष भुनी मछली खाई। बाद में उन्होंने निर्देश दिया, तुम जेरूसलम और सारे यहूदियों सामरिया में और पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह होगे। जेरूसलम में इन मजबूत गवाहों के अतिरिक्त हमारे पास पश्चिमी गोलार्ध में प्राचीन निवासियों के मध्य जी उठे प्रभु की अद्वितीय सेवकाई का वर्णन है। संपन्न देश में वह स्वर्ग से उतरा और लगभग 2500 लोगों को एक एक आगे आने और उनके बगल में उनके हाथ को डालने और उसे हाथों और पांव में कील के निशान को छूने का निमंत्रण दिया। और जब सारे लोगों ने जाकर देखा, वे कहते स्वर एक स्वर में पुकारने लगे,
witnessed for themselves they did cry out with one accord saying hosanna blessed be the
hosanna sarvoch parmeshwar ka naam aashishit ho aur ve yeshu ke pairon ke paas gir gaye aur unki aaradhna karne lage। मसीह के पुनरुत्थान दिखाता है कि उनका अस्तित्व स्वतंत्र और अनंत है, क्योंकि जिस रीति से पिता और आप में जीवन रखता है उसी रीति से उसने पुत्र को भी यही अधिकार दिया कि अपने आप में जीवन रखे। यीशु ने कहा था, पिता मुझसे प्रेम रखता है कि मैं अपना प्राण देता हूँ और फिर उससे ले लूँ, क्योंकि कोई मुझसे छीन नहीं सकता वरन मैं अपने आप ही देता हूँ। मुझे उसके देने का अधिकार है और उसे फिर लेने का अधिकार भी है। यह आज्ञा मुझे मेरे पिता से मिली है। उद्धारकर्ता जीवन के लिए भोजन या पानी या ऑक्सीजन या किसी अन्य वस्तु शक्ति या व्यक्ति पर निर्भर नहीं है। यहोवा और मसीहा दोनों के रूप में वे महान मैं हूँ और अपनी इच्छा और अपनी स्वयं की शक्ति पर निर्भर है। वह जीवित है और सदैव जीवित रहेगा। उसके प्रायश्चित और पुनरुत्थान के द्वारा यीशु मसीह ने पतन के सभी पहलुओं पर विजय प्राप्त की है। शारीरिक मृत्यु अस्थायी होगी और यहाँ तक कि आत्मिक मृत्यु भी खत्म होगी, क्योंकि हम सभी बेशक अस्थायी रूप से न्याय पाने के लिए परमेश्वर की उपस्थिति में जीवित खड़े होंगे। सब सच पर विजय पाने और हमें अनंत जीवन देने के लिए हमें उसकी शक्ति पर भरोसा और दृढ़ विश्वास रख सकते हैं, क्योंकि जब मनुष्य के द्वारा मृत्यु आई तो मनुष्य के द्वारा ही मरे हुए का पुनरुत्थान भी आया। और जैसे आदम में सब मरते हैं वैसे ही मसीह में सब जिलाए जाएंगे। एल्डर नील ए मैक्सवेल के शब्दों में, मृत्यु पर मसीह की विजय ने मनुष्य की दुविधा को समाप्त किया है। अब केवल व्यक्तिगत दुविधाएं ही हैं और इन्हें भी उनकी शिक्षाओं का पालन करने से दूर किया जा सकता है जो हमें व्यापक विनाश से बचाता है। न्याय की मांग को पूरा करने के पश्चात मसीह ने अब न्याय का स्थान ले लिया है, या हम कह सकते हैं वह न्याय है, ठीक जैसे वह प्रेम है। उसी तरह परिपूर्ण न्यायी परमेश्वर होने के साथ साथ वह परिपूर्ण दयालु परमेश्वर है। इस प्रकार उद्धारकर्ता सब बातों को पूरा करता है। नश्वरता में कोई भी अन्याय स्थायी नहीं है, यहाँ तक कि मृत्यु भी, क्योंकि वह जीवन को पुनः स्थापित करता है, क्योंकि उसके अनंत न्याय और दया के कारण न कोई घाव, अयोग्यता, धोखा या दुर्व्यवहार बिना मूल चुकाए जाता है। उसी प्रकार अपने जीवनों, हमारे चुनाव और हमारे काम, यहाँ तक कि हमारे विचार के लिए हमें जवाब देना है। हमें पतन से मुक्ति दिलाने के कारण हमारे जीवन वास्तव में उसके हैं। उसने कहा था, देखो मैंने तुम्हें अपना सुसमाचार दिया है और यही सुसमाचार जिसे मैंने तुम्हें दिया है कि मैं इस संसार में अपने पिता की इच्छा पूरी करने आया, क्योंकि मेरे पिता ने मुझे भेजा था कि मैं क्रूस पर उठाया जाऊं और मुझे क्रूस पर उठाए जाने के पश्चात मैं सारे लोगों को अपने पास ला सकूं, ताकि जैसे मैं लोगों के द्वारा उठाया गया वैसे ही मेरे सामने खड़े होने के लिए और अपने कर्मों के अनुसार न्याय पाने के लिए वे मेरे पिता के द्वारा उठाए जाएं। एक क्षण के लिए नासरत के यीशु की सही पहचान और महान दार्शनिक विवाद और जीवन के प्रश्नों को सुलझाने के लिए पुनरुत्थान के महत्व पर विचार करें। यदि यीशु वास्तव में पुनः जीवित हुआ था तो इससे साबित होता है कि वह अवश्य ही दिव्य जन है। किसी भी नश्वर शक्ति के पास मरने के लिए स्वयं को जीवित करने की शक्ति नहीं है, क्योंकि वह पुनर्जीवित हुआ था। यीशु केवल एक बढ़ई, शिक्षक, रबी या भविष्यवक्ता नहीं हो सकता, क्योंकि वह जीवित हुआ था। यीशु परमेश्वर ही रहा होगा, यहाँ तक कि पिता का इकलौता पुत्र। इसलिए जो उसने सिखाया था सच है, परमेश्वर झूठ नहीं बोल सकता। इसीलिए वह पृथ्वी का सृष्टि करता था जैसा कि उसने कहा था। इसीलिए स्वर्ग और नरक वास्तव में है जैसा उसने सिखाया था। इसलिए आत्मिक संसार है जहां अपनी मृत्यु के बाद गया था। इसीलिए फिर वो फिर से आएगा और पृथ्वी पर व्यक्तिगत रूप से राज करेगा। इसलिए सबके लिए अंतिम न्याय और पुनरुत्थान है। मसीह के पुनरुत्थान की सच्चाई के कारण सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञानी और दयालु पिता परमेश्वर होने के बारे संदेह, जिसने अपने इकलौते पुत्र को संसार की मुक्ति के लिए दे दिया, वे बेबुनियाद हैं। जीवन के अर्थ और उद्देश्य के विषय में संदेह गलत हैं। असल में यीशु मसीह ही एकमात्र वह नाम या मार्ग है जिसके द्वारा मानव जाति का उद्धार हो सकता है। मसीह का अनुग्रह सच्चाई है जो पश्चातापी पापी को क्षमा और शुद्ध दोनों करता है। वास्तव में विश्वास कल्पना या दार्शनिक आविष्कार से कहीं अधिक है। उसके द्वारा सिखाई अनंत और व्यापक सच्चाई है और निष्पक्ष और अपवर्तनीय नैतिक गुण है। उसकी व्यवस्था और आज्ञाओं का कोई भी उल्लंघन होने पर तुरंत पश्चाताप करना बहुत जरूरी है। उद्धारकर्ता के चमत्कार सच्चे हैं, जैसा कि उसने अपने चेलों से वादा किया था कि वे भी वैसा ही, यहाँ तक कि उससे बढ़कर चमत्कार कर सकते हैं। उसका पौरोहित्य अवश्य ही सच्ची शक्ति है जो सुसमाचार को प्रभावी में लाती और राज्य के रहस्यों की कुंजियों को, यहाँ तक कि परमेश्वर के ज्ञान की कुंजी को भी धारण करती है। इसीलिए इसकी विधियों से धार्मिकता की शक्ति प्रकट होती है। मसीह के पुनरुत्थान की सच्चाई के कारण मृत्यु हमारा अंत नहीं है और हमारी खाल के इस प्रकार नाश हो जाने के बाद भी गम शरीर में होकर ईश्वर का दर्शन पाएंगे। अध्यक्ष थॉमस एस मॉन्टन रॉबर्ट ब्लैशफोर्ड के विषय में कहते हैं, जिसने 100 वर्ष पहले अपनी पुस्तक गॉड एंड माय नेबर में मसीही जैसे परमेश्वर मसीह प्रार्थना और नश्वरता धारणाओं पर कठोर आक्रमण किया था। उसने निडरता से कहा था, मैंने सब कुछ साबित करने का दावा इतनी परिपूर्णता और निश्चितता से किया कि कोई भी ईसाई चाहे कितना भी महान या योग्य हो मेरी दलीलों का खंडन या इन्हें जुटला नहीं सकता। उसका संदेह इतना मजबूत था कि उसने किसी बाहरी सुझाव को अस्वीकार कर दिया था। तभी एक आश्चर्यजनक घटना घटी। उसके संदेह का किला पूरी तरह से तहस नहस हो गया। धीरे धीरे विश्वास की वे अनुभूतियां उसके भीतर विकसित होने लगी जिनका उसने तिरस्कार मजाक उड़ाया था। किस बात से उसमें इतना परिवर्तन आया था? उसकी पत्नी का देहांत हो गया था। टूटे हृदय के साथ वह उस कमरे में गया जहां उसकी पत्नी का निर्जीव शरीर पड़ा था। उसने फिर से उसके चेहरे को देखा जिसे वह प्रेम करता था। बाहर आकर उसने मित्र से बोला, यह वही है और फिर भी वह नहीं है। सब कुछ बदल गया है। कुछ जो पहले यहाँ था निकाल लिया गया है, अब वह नहीं है। क्या चला गया था यदि यह आत्मा नहीं थी? क्या प्रभु वास्तव में मरा था या फिर से जी उठा था? हाँ, यीशु मसीह के संबंध में हमारे धर्म का आधार भूत सिद्धांत है कि वह मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन फिर जी उठा और स्वर्ग से उठा लिया गया। प्रेरितों और भविष्यवक्ताओं की गवाही है और हमारे इस धर्म के संबंध में अन सभी बातें से जुड़ी हैं। जैसे भविष्यवाणी किया गया यीशु मसीह जन्म निकट आया, अन्य लोगों के साथ अतीत के नफाइयों और लमनाइयों के लोग भी थे जिन्होंने विश्वास किया, यद्यपि बहुत संदेह भी था। अंततः उसके जन्म का चिन्ह दिखाई दिया, एक दिन और एक रात बिना अंधकार के, और सभी को मालूम था। आज भी कुछ लोग मसीह के वास्तविक पुनरुत्थान में विश्वास करते हैं और बहुत से संदेह या अविश्वास करते हैं, लेकिन जानते हैं समय आने पर सब देखेंगे और सब जान जाएंगे। वास्तव में हर एक घुटना झुकेगा और हर एक जीव भी उसके सम्मुख पाप स्वीकार करेगी। तब तक मैं उद्धारकर्ता के पुनरुत्थान की बहुत से गवाहों पर विश्वास करता हूँ। पत्रस और बारह के उसके साथी और उसकी प्रिय शुद्ध मगदाला की मरियम, कई अन्य उसके अनुभव और गवाहियों नए नियम से पाई जाती हैं। मैं मॉर्मन की पुस्तक में पाई गई गवाही में विश्वास करता हूँ। प्रेरित नफी और संबंध देश में गुमनाम भीड़ के साथ अन्य, और मैं जोसेफ स्मिथ और सिडनी रिगडन की गवाही पर विश्वास करता हूँ, जिन्होंने बहुत सी अन्य गवाहियों के साथ इस युग में महान गवाही की घोषणा की थी कि वह जीवित है क्योंकि हमने उसे देखा है। उसकी तीक्ष्ण दृष्टि के समक्ष मैं स्वयं उस नाजरत के यीशु का गवाह हूँ। मुझे आशा है कि आप उस शक्तिशाली गवाही और उस गवाही की दिलासा प्राप्त करेंगे। यीशु मसीह के नाम में मैं प्रार्थना करता हूँ, आमीन।
In the name of Jesus Christ, amen.
इस सम्मेलन के समापन पर हम उन सभी का आभार प्रकट करते हैं जिन्होंने इन सेवाओं की तैयारी की में परिश्रम से अपना सहयोग दिया है। हम उन सब वार्ताकारों का जिन्होंने हमारा संबोधन किया है और उनका जिन्होंने सुंदर संगीत उपलब्ध कराया है आभार प्रकट करते हैं। अब हमें अपने प्रिय अध्यक्ष थॉमस मॉन्सन को सुनने का सौभाग्य होगा। अध्यक्ष मॉन्सन की टिप्पणी के पश्चात गायक मंडली इस सभा का समापन कम लेट अस अन्यू गीत गाने के द्वारा करेगी। अंत में 70 के एल्डर बेंजामिन डी होयोस द्वारा समापन प्रार्थना दी जाएगी और इसके पश्चात ये सम्मेलन स्थगित किया जाएगा।
My brothers and sisters, what a wonderful
मेरे भाइयों और बहनों, यह सम्मेलन बहुत शानदार रहा। हमने आत्मिक रूप से पोषण प्राप्त किया जब हमने इन भाइयों और बहनों के प्रेरणादायक शब्दों को सुना। संगीत बहुत ही बढ़िया था। संदेशों को पवित्र आत्मा की प्रेरणा से तैयार किया गया था और प्रार्थनाएं हमारे परमेश्वर के निकट ले गई। हम हर प्रकार से ऊपर उठाए गए जहां हमने मिलकर भाग लिया। मैं आशा करता हूं इस सम्मेलन के संदेशों को पढ़ने के लिए हम समय निकालेंगे जब ये कुछ दिनों में एलडीएस ऑर्ग पर उपलब्ध होंगे, जब ये एंजाइन अल्लाहना पत्रिका में छापे जाएंगे, क्योंकि इनकी ध्यानपूर्वक समीक्षा और अध्ययन जरूरी है। मैं जानता हूं कि आप मेरे साथ उन भाइयों और बहनों का हार्दिक आभार प्रकट करते हो जिन्हें इस सम्मेलन के दौरान सेवा मुक्त किया गया। उन्होंने अच्छी सेवा की और प्रभु के कार्य में विशेष योगदान दिया। उनका समर्पण पूरा हो गया है। हम उन भाइयों का भी समर्थन करते हैं किया जिन्हें नए पद की जिम्मेदारियों के लिए नियुक्त किया गया है। हम उनका स्वागत करते हैं। हम उन्हें बताना चाहते हैं कि स्वामी के कार्य में हम उनके साथ मिलकर सेवा करने की प्रतीक्षा करते हैं। जब हम उन संदेशों पर मनन करते हैं जो हमने सुने, मैं आशा करता हूं कि हम पहले से अच्छे बनने का प्रयास करेंगे। मैं आशा करता हूं कि हम उनके साथ दया और प्रेम पूर्वक व्यवहार करेंगे जो हमारा विश्वास और मानदंडों के अनुसार नहीं है। उद्धारकर्ता ने इस पृथ्वी पर सभी नर नारी के लिए प्रेम और मित्र भाव का संदेश दिया था। मैं आशा करता हूं कि हम सदैव उसके उदाहरण का पालन करेंगे। आज हम संसार में कई भयानक चुनौतियों का सामना कर रहे हैं, लेकिन मैं आपको आश्वासन देना चाहता हूं कि हमारा स्वर्गीय पिता हमारी चिंता करता है। वह हमारा मार्गदर्शन करता रहेगा और आशीष देगा जब अपना विश्वास और भरोसा उसमें रखते हैं। वह हमारे मार्ग में आने वाली सभी कठिनाइयों से हमें पार करेगा। मेरी प्रार्थना है कि स्वर्ग की आशीषें हम में से प्रत्येक के साथ हों, हमारे घर प्रेम और कृपा और प्रभु की आत्मा से भरे रहें। हम सुसमाचार की अपनी गवाहियों का निरंतर पोषण करते रहें कि वे शैतान के आक्रमण से हमारी सुरक्षा करें। जो आत्मा हमने पिछले दो दिनों में महसूस की है वे हमारे साथ हमेशा बनी रहे जब हम प्रतिदिन अपने काम में व्यस्त होते करते हैं। मैं आशा करता हूं कि हम परमेश्वर का कार्य करते हुए हमेशा पाए जाएं। मैं गवाही देता हूं कि यह कार्य सच्चा है कि हमारा उद्धारकर्ता जीवित है, कि वह पृथ्वी पर अपने गिरजे का मार्गदर्शन और निर्देशन करता है। मैं आपको अपनी साक्षी और गवाही देता हूं कि हमारा परमेश्वर अनंत पिता जीवित है और वह हमसे प्रेम करता है। वह वास्तव में हमारा पिता है और वह हमारा अपना और सच में है। मैं आशा करता हूं कि हम महसूस करेंगे कि हमारे बहुत निकट आना चाहता है। वह हमारी बहुत मदद करना चाहता है। वह हमसे बहुत प्रेम करता है। मेरे भाई और बहनों, परमेश्वर आपको आशीष दे। उसकी प्रतिज्ञा की गई शांति आपके साथ आज और हमेशा कायम रहे। मैं आपसे अगले छह महीनों के लिए विदाई लेता हूं, जब हम फिर मिलेंगे। और मैं ऐसा प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम में करता हूं। आमीन।
Come, let us anew our joy. Our dear Heavenly Father,
हमारे प्रिय स्वर्गीय पिता, जब हम इस महासम्मेलन को समाप्त करते हैं, हम अपने आभार आपके लिए व्यक्त करते हैं परमेश्वर, उसकी आत्मा के लिए जिसने हमारे हृदयों को छुआ है। हम आपके हाथ को इस पुनर्स्थापित गिरजे पर आपके हाथ को समझते हैं। हम आभारी हैं परमेश्वर और उस प्रायश्चित बलिदान के आपके बेटे के द्वारा दी गई थी, जो हम आपके प्रेरणादायक मार्गदर्शन के लिए भविष्यवक्त थॉमस स्मॉन्सन के लिए और उनके सलाहकारों के लिए हम जानते हैं पिता कि अपने हमारे इस काम को इस समय बहुत बढ़ाया है। हम सबको ये साहस दीजिए ताकि हम सुसमाचार को बांट सकें, उन सब की मदद के लिए पहुंच सकें जो भूख भटक गए हैं, ताकि हम उनके आपके पास ला सकें। कृपया हमें याद करने में मदद कर सकें। जो भी शिक्षाएं हमने सीखी इन कॉन्फ्रेंस के दौरान, उनको अप्लाई कर सकें और अपने घरों में ले जाएं। परमेश्वर सुरक्षा शांति में हम आपकी प्रार्थना करते हैं कि हमारे साथ हो, कि हमारे साथ होते रहे। आपके पुत्र हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम में, आमीन।
This has been a broadcast of the 184th annual General
Conference. ये अंतिम दिनों के संतों का, यीशु मसीह के गिरजाघर का 184वां वार्षिक जनरल सम्मेलन का प्रसारण था। वार्ताकारों को जनरल अधिकारियों और गिरजे के जनरल कार्यालयों से चुना गया था। संगीत मार्मन गायक मंडी द्वारा दिया गया था। बार्नवेल डिस्ट्रीब्यूशन द्वारा इस प्रसारण का प्रबंध जन सेवा के लिए किया गया था। कोई भी पुनरुत्पादन करना, रिकॉर्डिंग, प्रतिलिपि बनाना या इस कार्यक्रम का दूसरा प्रयोग करना बिना किसी लिखित सहमति के वर्जित है।